बहुत से बीमार लोग हैं, मैं एक ही वक्त में सबको नहीं ले सकता। लेकिन सुने, मुझे आज रात दोबारा यहाँ आकर यकीनन खुशी हो रही है। इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में हूँ और इन शानदार लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। और कुछ लम्हे पहले जब हम वहाँ से अंदर आ रहे थे तो बाहर गली में खड़े हुए लोगों ने कहा, हम अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा, खैर हो सकता है कि मैं आपके लिए कुछ जगह बना सकूं, लेकिन उन्होंने इन्हें अंदर आने नहीं दिया। इसलिए मुझे अफसोस है, हमारे पास इनके लिए जगह नहीं है। बस उन्होंने बताया है बेसमेंट में भी जगह नहीं है। यही सबब है जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ आकर खुश हैं और खादमों के इस उम्दा ग्रुप और यहाँ के ताजरों को देखकर भी खुश हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए तमाम नुमाइंदों को देखकर भी खुश हैं। मुझे आज सुबह नाश्ते पर बातचीत करने का शानदार मौका मिला और इतने अच्छे लोगों के सामने बोलना मेरे लिए यकीनन एक एजाज की बात थी। और मैं इस मौजू पर बोल रहा था, चिल्का बीज के साथ वारिस ना होगा। मैं इसे मुकम्मल नहीं कर पाया था और इसमें किसी बाई की गलती नहीं थी। उन्होंने इंतजामिया से दरखास्त की थी हमें थोड़ी देर और वक्त दिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की इजाजत नहीं दी थी। मैं यकीनन इस बात की तारीफ करता हूँ बाई डेमोस, ये बहुत बहुत अच्छा है। मैं यकीनन आप में से हर एक की मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उन लोगों ने हमें पैगाम मुकम्मल नहीं करने दिया था, इसलिए हमें मजबूरन बात को वहीं खत्म करना पड़ा था। मैं इसे फिर कभी किसी और वक्त पूरा करूंगा। छिलका बीज के साथ वारिस ना होगा। आप में से जितने वहां मौजूद थे, क्या आप इसे समझ गए थे? मुझे उम्मीद है समझने के लिए वहां काफी कुछ कहा गया था, लेकिन मुझे मालूम है आज रात एक पैनल यहां मौजूद है, इसलिए मैं आपको यहाँ ज्यादा देर रोकना नहीं चाहता कि आप वहाँ ना जा सकें, क्योंकि मैं समझता हूँ ये यकीनी तौर पर पेंटिकोस्टल पर यकीन रखने वाले लोगों के लिए एक एहसासा है। वो पैनल हमने गुज़िश्ता रात देखा था, बस बहुत अच्छे आदमियों का ग्रुप था और शानदार जवाब थे और सीधे थे। मुझे ये देखकर हकीकी खुशी का एहसास हुआ और मुझे यकीन है कि आज रात भी खुदावंद बरकत देगा और जो कोई भी देखे काश वो ईमान ले आए। ये मेरी दिली दुआ है। और आज डाक और कॉलों के जरिए बहुत सी रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि उस मीटिंग में बहुत से लोगों को शिफा मिली है। मुझे इससे बेहद खुशी हुई है, क्योंकि बीमार लोगों को देखना ये दरअसल मेरी खिदमत का एक हिस्सा है। मैं यहाँ कलाम सुनाने आया हूँ। मैं, आप जानते हैं, मैं कोई मुनाद नहीं हूँ, बल्कि मैं अपनी इस कैंट की ग्रामर के साथ इस कैंट कह देता हूँ और इसी तरह बहुत सारे अल्फाज हैं। इसीलिए मैं आज के जदीद दौर के मुनाद की तरह नहीं बोल सकता हूँ। मैं उस मकाम को हासिल नहीं कर सकता क्योंकि मैं ज्यादा तलीम याफ्ता नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मुझे उसके मुतालिक मालूम है, मुझे उसका इजहार दूसरों के सामने करना पसंद है। ये जो कुछ भी मैं महसूस करता हूँ कि मैं उसके मुतालिक जानता हूँ, ये जो मैंने सीखा है कि वो मेरे साथ कैसा है, वो मेरी पूरी जिंदगी है, वो सब कुछ है जो मैं कभी होने की त्वको कर सकता था और उससे कहीं ज्यादा है जो मैंने कभी सोचा था। जब मैं एक छोटा लड़का था तो मुझे लगता था शायद जमीन पर मेरा कोई दोस्त होगा, लेकिन अब यकीनन मैं इतने अजीम दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं हूँ, हो, मैं माफी चाहता हूँ, मैं शायद माइक से दूर हो गया हूँ, इसीलिए आवाज ठीक नहीं जा रही, उसने कहा। अब मुकम्मल तौर पर इबादत में आगे बढ़ते हैं और पाक कलाम में से कुछ पढ़ते हैं। मैं हमेशा बाइबल को पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि ये खुदा का कलाम है। मैं ये ईमान रखता हूँ और मेरा ये ईमान है ये खुदा का बेखता कलाम है। और अब मैंने कुछ हवाला जात यहाँ लिखे हुए हैं और चंद नोट्स भी हैं जिनके मैं हवाले पेश करूँगा। और मैं थोड़ी देर के लिए शायद 45 मिनट के लिए बातचीत करूँ और फिर हम आज रात वक्त पर रुखसत हो जाएंगे ताकि दोबारा उस शानदार पैनल को देखें। और मैं पूरी यकीन हूँ खुदा इस सारे वक्त के दौरान आपको बरकत देता रहेगा। मुझे मालूम है आपने क्या करना है और मुझे आज रात ट्यूसान जाना है। बहरहाल आप देखें, आप तस्वीर कर सकते हैं ये 10 घंटे का सफर है। मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ और मैंने सरकारी मुआयने की वजह से आज सुबह येलो फीवर का टीका लगवाया था, इसलिए मैं वहाँ गया था। मैंने एक दिन पहले भी उन्हें टाल दिया था, लेकिन अब वो लोग दोबारा जवाब में ना सुनना नहीं चाहते हैं। और मुझे अभी टेटनस और टाइफस का एक और टीका भी लगवाना है और मुझे बूस्टर्स भी लेने हैं। बस मैं इस मौके के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कन्वेंशन से पहले हमारी बेहतरीन इबादत हुई, उसने यकीनन मेरे दिल में जोश पैदा कर दिया है। आप बड़े अच्छे लोगों की जमात हैं, मुझे यकीन है खुदा आपको बरकत देगा। और जब वो अजीम घड़ी आई तो उस बड़े दरिंदे ने जो वहाँ लेटा हुआ था चंद दिन पहले, उसने खुद को अलास्का में पलटा और आज सुबह उसने वाशिंगटन के नीचे भी तकरीबन अपनी दुम फेरी है। वो बड़ी आसानी से इस तरफ भी आ सकता है, लेकिन रूहुल कुद्दस ने मुझे ठीक ठीक बताया है। और कुछ लोग मुझसे जवाब में पूछ रहे थे, भाई ब्रहनम क्या यहाँ भी ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं ये नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता, अब तक मुझे नहीं मालूम है, यही सच्चाई है। मैं हमेशा आपके साथ दयानतदार रहना चाहता हूँ। मैं खामखा अंदाजे नहीं लगाता या ख्याल या कोई बात नहीं बताता, ऐसी कोई बात नहीं बताता जिस पर मेरा ईमान ना हो। जब मैं आपको बताता हूँ ये होने वाला है, तो पहले खुदावंद मुझे बताता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं जानता हूँ सारी दुनिया हिल रही है, हम आखिरी वक्त में हैं, लेकिन एक काम है जो मैंने हमेशा करने की कोशिश की है। भाई शकेरियन आज सुबह बता रहे थे कि किस तरह वो दुआया कतार में जाया करते थे, और वहाँ पहुँचकर लोगों के ऊपर आने से पहले वो उनसे कार्ड लेते थे और उन्हें देखते थे और देखते थे जो उन्होंने लिखा होता था। क्या मैंने उन्हें वही बताया है? उन्होंने अपने दुआया कार्ड पर तमाम किस्म की बातें लिखी होती थी, आप जानते हैं, और वो सिर्फ ये देखना चाहता था क्या ये दुरुस्त है। उसने कहा उन सैकड़ों कार्डों में से जिन्हें उसने चेक किया था एक भी बात गलत नहीं निकली थी। देखें, जब तक ये खुदा की तरफ से है इसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर मैं कभी भी इसमें अपनी मर्जी शामिल करूंगा तो वहीं से खराबी शुरू हो जाएगी। ज्यादा अरसा नहीं हुआ एक छोटी लड़की थी जिसका बाप यहाँ बैठा हुआ मेरी बातें सुन रहा है, वो मेरे पास आई। उस लड़की ने एक ख्वाब देखा था। उसने कहा भाई ब्रहनम इस ख्वाब का क्या मतलब है? मैंने कहा बहन मैं नहीं जानता, मुझे तब मालूम होगा जब खुदावंद मुझे बताएगा। बस मैं गया और खुदावंद से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ ना बताया। छोटी लड़की दोबारा मेरे पास आई, उसने कहा भाई मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? मैंने कहा प्यारी बेटी इधर आकर बैठ जाओ। मैंने कहा तुम्हारे वालिद और वालदा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, समझे, और रिटायर्ड होकर कनाडा से यहाँ आए हैं और मेरे साथ यहाँ सफर में हैं। मैं जो कुछ कहने की कोशिश करूँगा वो उसका यकीन कर लेंगे, और मैंने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में कभी किसी को कोई गलत बात नहीं बताई। हालांकि मेरा ख्याल है मैं ख्वाब का मतलब समझता हूँ, लेकिन जब तक मैं इस ख्वाब को खुद ना देखूँ और फिर खुदावंद मुझे इसका मतलब ना बताए, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ। देखें, अब अगर मैं कोई बात कह दूँ तो कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि तुम्हें मौत और जिंदगी के दरमियान मेरी जरूरत पेश आ जाए, तब तुम फैसला नहीं कर पाओगी कि मेरा यकीन किया जाए या नहीं। अगर मैं खुदावंद के नाम में तुम्हें कुछ बताऊँ तो यकीनन वैसा ही होगा, क्योंकि उसने मुझे ये बताया है। और फिर इन तमाम सालों में दुनिया भर में पूरी दुनिया में ये एक बार भी गलत नहीं हुआ है, क्योंकि और अब आप जानते हैं कोई भी इंसान ला खता नहीं हो सकता है। ये सब कुछ खुदा के रूके वसीले होता है। और अब मेरे पास एक पैगाम है जिसका मैं जुम्मेदार हूँ, और बहुत बार लोगों ने मेरे बारे में इस तरह सोचा है भाई शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने बैठकर एक मिनट के लिए ऐसा ना सोचा हो कि मैं एक बहुत बुरा शख्स हूँ जो लोगों से प्यार नहीं करता बल्कि हमेशा उनकी कांट छांट करता रहता हूँ। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं लोगों से प्यार करता हूँ, और आप जानते हैं मोहब्बत दुरुस्त करती है। अगर आपका छोटा बेटा बाहर सड़क पर बैठा हो और आप कहें जूनियर मेरे प्यारे मैं नहीं चाहता तुम वहाँ बाहर बैठो, मगर और कारें हॉर्न बजाती हुई उसके पास से गुजर रही हैं और आप उसे अंदर ले आते हैं लेकिन वो फिर बाहर भाग जाता है, देखें, फिर आपको उसे दुरुस्त करना चाहिए। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो फिर आप उसे दुरुस्त करेंगे, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप किसी आदमी को देखते हैं जो किसी छोटी कश्ती में बैठा हुआ आबशार की तरफ जा रहा है और आपको मालूम हो जाता है कि उसकी कश्ती आबशार में गिरकर डूब जाएगी, तो क्या आप कहेंगे जॉन तुम्हें थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए, हो सकता है तुम उससे पार ना कर सको। अगर मैं देखूं कि वो नहीं रुक रहा और अगर मुमकिन हुआ तो मैं उसे कश्ती से बाहर खींच लूंगा, क्योंकि मोहब्बत ये काम करती है। और अब जब मैं ये पैगाम देता हूँ तो मैं कोई नई तालीम फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा या वगैरह वगैरह, मैं ये पैगाम बस अपनी कलीसिया में देता हूँ, लेकिन इससे बाहर उन मर्दों खवातीन के दरमियान जो मुख्तलिफ तंजीमों और मुख्तलिफ नजरियात से ताल्लुक रखते हैं उनके दरमियान मैं बड़े मुलायम अंदाज में वजाहत करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इतना काफी है, अगर आप खुदा की रूह से पैदा हुए हैं तो मेरा मानना है आप समझ जाएंगे मेरा क्या मतलब है। क्रिश्चियन लोग समझ जाएंगे, चाहे वो मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेसबिटेरियन या जो भी हैं। अब आज रात मैं चाहता हूँ पदेश के 24वें बाब को देखते हैं, और मैं चाहता हूँ पदेश 24वें बाब की 12वीं आयत से पढ़ना शुरू करूँ। और उसने कहा ऐ खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। देख मैं पानी के चश्मे पर खड़ा हूँ और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू जरा अपना गड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूं, और वो कहे ले पी और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी, तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है, और इसी से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका पर कर्म किया है। और फिर मुकाशवा की किताब को लेते हैं, पहले बाइबल की पहली किताब पदेश में से पढ़ा है। अब मैं बाइबल की आखिरी किताब मुकाशवा के 21वें बाब की 9वीं आयत से पढ़ना चाहता हूँ। हमने यहाँ पदेश की किताब के हवाले को देख लिया है, अगर आप चाहें तो पूरा बाब पढ़ सकते हैं। इसमें खुदा अली अजर को भेज रहा है, या मुझे माफ कीजिए, इब्राहिम अली अजर को इसहाक की दुल्हन तलाश करने के लिए भेज रहा है, और खूबसूरत रिबका मंजर पर आती है, और ये अली अजर की दुआ का कामिल जवाब था जो इब्राहिम के खादम अली अजर ने दुआ मांगी थी। अब मुकाशफा 21वें बाब की 9वीं आयत को देखते हैं। फिर उन सात फरिश्तों में से जिनके पास सात प्याले थे और वो पिछली सात आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। अब आज रात मैं जिस मजमून पर बात करना चाहता हूं, वो है एक दुल्हन का इंतखाब। और ये पैगाम अगर मेरे भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये टेप आप पूरी दुनिया में भेज सकते हैं। और अब इस पैगाम में मैं सिर्फ मौजूदा जमात से बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ये टेपें पूरी दुनिया में जाती हैं। इनका बेशुमार जुबानों में, यहाँ तक कि बुत प्रस्त कौमों की जुबानों में भी तर्जमा किया जाता है। हम कलीसिया की सोसाइटी में ये टेपें बिना कीमत भेजते हैं और इनका तर्जमा किया जाता है, और ये टेपें अफ्रीका के सब जंगलों में और भारत में जाती हैं और पूरी दुनिया में भेजी जाती हैं। अब एक दुल्हन का इंतखाब, जिंदगी के बहुत से मामलात में हमें इंतखाब करना होता है। तर्ज जिंदगी बजाते खुद एक इंतखाब होता है। हमारे पास अपना रास्ता चुनने का हक है, जिस तरह से जीना चाहते हैं वैसा रास्ता चुन सकते हैं। तालीम एक इंतखाब है, हम इंतखाब कर सकते हैं कि हम तालीम हासिल करना चाहते हैं या हम तालीम हासिल करना नहीं चाहते हैं। हमें इस इंतखाब का मौका मिलता है। सही और गलत एक इंतखाब है। हर आदमी को, हर औरत को, हर लड़के और लड़की को इंतखाब करना होता है, वो दुरुस्त जिंदगी गुजारने की कोशिश करना चाहते हैं या गलत जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये एक इंतखाब है। इंतखाब एक बड़ी चीज है। आपकी अबदी मंजिल भी एक इंतखाब है। और शायद आज रात इस इबादत के इख्तिताम से पहले आप में से कुछ लोग इंतखाब करें कि आप अबदियत कहाँ गुजारेंगे। बस एक वक्त ऐसा आएगा, हालांकि आप खुदा को बहुत बार रद्द कर चुके हैं, तो भी एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुदा को आखिरी बार रद्द करेंगे। रहम और अदालत के दरमियान एक हद बंदी है, और उस हद बंदी को पार करना किसी भी मर्द या औरत, लड़के या लड़की के लिए खतरनाक चीज है, क्योंकि जब आप उस आखिरी हद को पार कर जाते हैं तो फिर वापसी मुमकिन नहीं होती है। इसलिए आज रात बहुत सारे लोगों को अपना फैसला करने के लिए वक्त दिया गया है कि वो ना खत्म होने वाली अबदियत कहाँ गुजारेंगे। हमें अपनी जिंदगी में एक और इंतखाब करना होता है, जो कि एक जीवन साथी का इंतखाब होता है। एक जवान मर्द या औरत जब जिंदगी के अरूज पर पहुँचते हैं तो उन्हें इंतखाब करने का हक दिया गया है। जवान मर्द इंतखाब कर सकता है, औरत उसे कबूल करने या रद्द करने का हक रखती है, लेकिन ये इंतखाब दोनों तरफ मौजूद है। दोनों मर्द और औरत, उनके पास एक इंतखाब का पूरा पूरा हक है। बहैसियत एक मसीही होते हुए आपको इंतखाब करना होता है। आप अमेरिका में इस वक्त मौजूदा किसी भी कलीसिया में शामिल होने का इंतखाब कर सकते हैं। आप किसी भी कलीसिया में शमूलियत इख्तियार करने का इंतखाब कर सकते हैं। ये आपका अमरीकी हक है, ये एक इंतखाब है। अगर आप ना चाहें तो आप किसी भी कलीसिया में ना जाएं। लेकिन अगर आप मेथोडिस्ट से, बैप्टिस्ट या कैथोलिक से, प्रोटेस्टेंट या कुछ और बनना चाहते हैं, तो कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता या किसी और कलीसिया में लेकर नहीं जा सकता। ये हमारी आजादी है, यही चीज हमारी जमहूरियत है। हर शख्स अपने लिए इंतखाब कर सकता है, ये मजहबी आजादी है और ये एक अजीम बात है। खुदा इसे कायम रखने में हमारी मदद करे ताकि हम इसे कायम रख सकें। आपके पास भी इंतखाब है। आया जब आप इस कलीसिया का इंतखाब करते हैं तो आप इंतखाब करते हैं, आप इस कलीसिया में आएंगे या किसी और कलीसिया का इंतखाब करेंगे जो अबदी मंजिल की तरफ आपकी रहनुमाई करेगी। आप एक ऐसी कलीसिया का इंतखाब कर सकते हैं जिसके पास कोई ऐसा अकीदा हो जिसे आप अपनी पसंद के मुताबिक समझते हैं, या कोई और कलीसिया हो जो अपना अकीदा रखती हो। और फिर खुदा के कलाम के लिए भी आपको इंतखाब करना होता है, आपको इंतखाब करना पड़ता है। हमारे दरमियान इंतखाब का गैर तहरीरी कानून मौजूद है। मुझे यकीन है एक मरतबा ये एलिया ही था, फैसले के नाजुक मौके पर कोई किरमल पर खड़ा था। और आज बहरान की इस बड़ी घड़ी में हमें भी वही सूरत हाल दरपेश है। और शायद आज रात आपको या मुझे कोई किरमल के तजर्बे की तरह हमें भी अपना इंतखाब करना पड़े। सच कहूँ तो मेरा ख्याल है अब ये दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब आपको एक इंतखाब करना पड़ेगा। और आप लोग जो अपनी तंजीमी कलीसियाओं में हैं, ये यकीन कर लें आपके पास फैसले की घड़ी आ पहुंची है और आप इंतखाब करने जा रहे हैं। आपको वर्ल्ड काउंसिल में शामिल होना पड़ेगा, वरना आपकी तंजीम मजीद कायम नहीं रहेगी। आपको ये इंतखाब करना पड़ेगा और ये मौका जल्द आने वाला है। और आखिरी घड़ी का इंतजार करते रहना भी खतरनाक बात है, क्योंकि हो सकता है आपसे कोई ऐसा काम हो जाए जिसका आप कभी इनकार ना कर सके। आप जानते हैं एक वक्त ऐसा होता है जब आपको खबरदार किया जा सकता है, लेकिन जब आप खतरे की लकीर के पार कदम रख देते हैं फिर आप दूसरी तरफ के बाशिंदे बन जाते हैं, छाप लग जाती है। याद रखें, जब जुबली का साल आता था तो काहिन नरसिंगा फूंकता हुआ ऐलान करता था कि हर गुलाम आजाद होकर जा सकता है, लेकिन अगर वो गुलाम अपनी आजादी को कबूल करने से इनकार कर देता था तो फिर उसे हैकल में ले जाकर चौकट के साथ खड़ा किया जाता था और सितारी से उसका कान छेद दिया जाता था। इसके बाद वो हमेशा के लिए अपने मालिक का गुलाम बन जाता था। उसके कान का छेदा जाना सुनने की अलामत है। ईमान सुनने से पैदा होता है। उसने नरसिंगे की आवाज सुनी लेकिन उसने उस पर कान ना लगाया। और बहुत मर्तबा मर्द और औरतें खुदा की सच्चाई को सुनते हैं और सच्चाई को साबित होते हुए भी देखते हैं, लेकिन फिर भी उसे सुनना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह कुछ और होती है। वो सच्चाई और हकीकत का सामना करने की बजाय दूसरी चीज का इंतखाब कर रहे होते हैं, इसलिए अंजील की तरफ से उनके कान बंद हो जाते हैं। वो इसे फिर दोबारा कभी नहीं सुनेंगे। मेरा ये आपके लिए मशवरा है कि जब खुदा आपके दिल से कलाम करे तो आप पूरी तरह उस पर अमल करें। एलिया ने उनको इंतखाब का मौका दिया जो उन्हें करना चाहते थे। आज फैसला कर लो तुम किसकी इबादत करोगे। अगर खुदा ही खुदा है तो उसकी इबादत करो, लेकिन अगर बाल खुदा है तो उसकी इबादत करो। अब जैसा कि हम देखते हैं कि तमाम कुदरती चीजें रूहानी चीजों की एक तमसील है, जैसे आज सुबह हमने सूरज और उसकी फितरत के बारे में सीखा था, यही मेरी पहली बाइबल थी। इससे पहले मैं बाइबल का कोई सफा पढ़ता, मैं खुदा को जानता था, क्योंकि बाइबल फितरत में हर जगह लिखी हुई है और ये खुदा के कलाम से पूरी तरह मुताबिकत रखती है। कैसे मरना, दफन होना और दोबारा जिंदा होना फितरत में मौजूद है। कैसे सूरज तलू होता है, पार जाता है, डल जाता है, मर जाता है और फिर जिंदा हो जाता है। इस तरह हम बहुत सारी चीजों के नमूने देख सकते हैं। खुदा फितरत में है, लेकिन इस पैगाम के लिए हमें इस बात को यहीं छोड़ना पड़ेगा। अब अगर रूहानी चीज या जिस्मानी चीज रूहानी चीज का एक नमूना है, फिर कुदरती तौर पर दुल्हन का इंतखाब रूहानी तौर पर एक दुल्हन यानी दुल्हन के इंतखाब का एक नमूना है। अब बीवी का इंतखाब हमारे लिए या एक आदमी के लिए बड़ा संजीदा मामला है, क्योंकि इसमें अहद बांधा जाता है जब तक मौत हमें जुदा ना करे। इसी तरह हमें इसे कायम रखना चाहिए और आप इस अहद को खुदा के सामने बांधते हैं कि सिर्फ मौत ही आपको जुदा करेगी। और मैं सोचता हूँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। एक आदमी जो ठीक जहन के साथ मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी कर रहा हो, उसे बड़ी एहतियात से बीवी का इंतखाब करना चाहिए। मोहतात हो जाएं, आप क्या करने जा रही हैं, क्योंकि एक औरत शोहर का इंतखाब कर रही है या शोहर के इंतखाब को कबूल कर रही है। खास तौर से इन दिनों में बहुत एहतियात करना चाहिए कि वो क्या करने जा रही है। आदमी को बीवी का इंतखाब करने से पहले दुआ करनी चाहिए और सोचना चाहिए। मैं सोचता हूँ क्या हुआ है, आजकल तलाक के इतने ज्यादा केसेस हैं और अमेरिका में इतने ज्यादा तलाक के केसेस हैं कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं। हम बाकी दुनिया से आगे निकल चुके हैं। इस कौम में बाकी तमाम जगहों से ज्यादा तलाकें हो रही हैं। और ये एक क्रिश्चियन कौम मानी जाती है और समझी जाती है। हमारी तलाक की अदालतों पर अफसोस है। मेरे ख्याल से इसकी वजह मर्दों का खुदा से दूर हो जाना है और औरतों का खुदा से दूर हो जाना है। हम इस नतीजा पर पहुंचते हैं कि अगर एक मर्द और एक औरत इस मामले को दुआ में रखे और खूबसूरत आंखों या बड़े बड़े मजबूत कंधों या बाकी ऐसी चीजों को ना देखे या दीगर दुनियावी कशिश वाले पहलू को ना देखे, बल्कि पहले खुदा की तरफ ध्यान करे और कहे, ऐ खुदा, क्या ये तेरी मर्जी है। मेरा ख्याल है आजकल बहुत ज्यादा धोखा है, जैसे स्कूल में होता है जब सुबह के वक्त बच्चे आते हैं। देखें, मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे दोस्त हैं, वो आते हैं और कहते हैं, भाई ब्रहनम, क्या आप हमारे लिए दुआ करेंगे, आज हमारा एक टेस्ट है। मैं सारी रात काम करता रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, मेरे लिए दुआ करें। मेरा ख्याल है कि कोई भी स्कूल का बच्चा, अगर आप चाहें, अगर और जब वालदेन बच्चों के हमरा सुबह मेज के चुगिर्द बैठते हैं तो बच्चा कहता है, माँ, आज जॉन का टेस्ट है, आए अब उसके लिए दुआ करें। मेरा ख्याल है अगर आप ऐसा करें तो ये चीज बाकी सब चीजों पर गालिब आ सकती है। फिर आपको किसी और के पर्चे पर नजर डालने या नकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सोचता हूँ आप सिर्फ बैठ जाएं और मामला दुआ में रखें। और काश हम इस बात का मुतालिया करें कि हम क्या करने जा रहे हैं जब हम शादी करने वाले होते हैं। जब हम अपनी बीवी या शोहर का इंतखाब करने लगते हैं तो पहले हमें इस मामले पर तालीम हासिल करनी चाहिए। एक मर्द को दयानतदारी से दुआ करनी चाहिए क्योंकि उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। याद रखें, अहद किया जाता है जब तक हमें मौत जुदा ना करे। वो गलत इंतखाब करके अपनी जिंदगी तबाह कर सकता है, लेकिन अगर उसे ये मालूम हो जाए कि वो गलत इंतखाब कर रहा है और एक ऐसी औरत से शादी करने लगा है जो उसकी जिंदगी के लिए मुनासिब नहीं है और फिर भी वो शादी करता है, तो फिर ये उसकी अपनी गलती है। अगर एक औरत एक शोहर का इंतखाब करती है और उसे मालूम हो जाता है कि वो उसके लिए मुनासिब शोहर नहीं है और आपको इल्म हो जाता है क्या गलत और क्या ठीक है, तो फिर ये आपकी अपनी गलती है। लिहाजा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक आप पूरे तौर पर दुआ ना कर ले। कलीसिया का इंतखाब करना भी ऐसा ही मामला है। अब आपको उस कलीसिया के मुतालिक दुआ करनी चाहिए जिसके साथ आपकी रफाकत है। याद रखें, कलीसियाएं एक रूह के बहाव में चलती हैं। अब मैं तनकीदी बनना नहीं चाहता, लेकिन मैं महसूस करता हूँ मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और इन्हीं दिनों में से किसी दिन मुझे रुखसत होना है, और आज रात या किसी भी वक्त जो कुछ भी मैं कहूँगा अदालत के दिन मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा, और इसलिए मुझे पूरी संजीदगी से और सच्चे दिल से पुर यकीन होना चाहिए। लेकिन जब आप किसी कलीसिया में जाते हैं तो आप उस कलीसिया के रवैये पर गौर करें। आप थोड़ी देर के लिए पास्टर का रवैया देखें, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि कलीसिया का रवैया पास्टर जैसा ही होता है। कभी कभी मुझे लगता है कहीं हम पाक रूह हासिल करने की बजाय एक दूसरे की रूह हासिल ना कर लें। आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक पादरी वाकई बुनियाद परस्त होता है और उसी काम को जारी रखता है, तो आप देखें जमायत भी उसी तरह की होगी। मैं आपको ऐसी कलीसिया में ले जाऊंगा जिसमें मैंने पास्टर को देखा था, वो खड़ा होकर अपने सर को आगे पीछे झटका देता था। आप कलीसिया को देखें तो वो भी वैसा ही करती है। आप किसी पास्टर को कोई काम करते हुए देखें तो कलीसिया भी वही काम करेगी। देखें, अगर मैंने किसी चर्च का चुनाव करना होता तो मैं एक हकीकी बुनियादी फुल गोस्पल बाइबल चर्च का चुनाव करता। अगर मुझे अपने खानदान को ले जाने के लिए किसी का इंतखाब करना होता तो यही करता, इंतखाब करें। मैंने देखा एक दिन ये लड़के भाई शकेरियन का बेटा और दामाद मुझे एक नौजवान पर दुआ करने के लिए ले गए जो कि एक खुश लबास गुलूकार था, अभी वापस आया ही था। उसका नाम फ्रेड बर्कर था, अभी एक सफर से वापस आया ही था। और उन्होंने मुझे बताया कि फ्रेड मरने वाला है और इससे पहले मैं उसके घर में दाखिल होता दूसरा पैगाम आ गया, अब लगता है शायद वो मर गया है। और उसने कहा उसे हेमरेज हुआ था और वो मफलूज हो गया था और अब वो मर रहा है और उसकी बीवी चाहती थी कि मैं उसके लिए दुआ करूं। और मैंने सोचा हो अगर मैंने हवाई जहाज से जाने की कोशिश की तो वो मेरे पहुंचने तक मर जाएगा, हो सकता है कि वो अब तक मर चुका हो। बस मैंने जल्दी से फोन करके उस खातून से बात की और उन्होंने किसी तरीके से फोन फ्रेड के कान से लगाया। वो खुराक नहीं निकल सकता था, वो उसे मस्नूई तरीके से खुराक दे रहे थे। और जब हमने उसके लिए दुआ की तो उसने इशारे से कहा मस्नूई खुराक की नाली मेरे गले से निकाल दो। वो खुराक निगलने के काबिल हो गया। डॉक्टरों को ये यकीन नहीं आ रहा था, उन्होंने नाली निकाल दी और वो खुराक खा सकता था। अगले रोज वो बैठने के काबिल हो गया। एक कलीसिया का इंतखाब कर रही है। कुछ देर पहले अभी अभी टेलीफोन आया था, आज सुबह लुईविल से मेरी कलीसिया की एक रुकन खातून जो दर हकीकत बैप्टिस्ट है वो आज सुबह सवेरे फोत हो गई है। और मेरे घर पर कलीसिया के हकीकी मुकद्दस लोग जमा हुए और मिलकर उस खतून की तरफ चले गए। इससे पहले कफन दफन करने वाले आदमी उसे तैयार करते उस खातून के चौगिर्द खड़े हो गए और तब तक दुआ करते रहे जब तक वो जिंदा ना हो गई। और आज रात वो जिंदा है। ये मेरी कलीसिया के बुजुर्ग थे। देखें, इन्हें सिखाया गया था कि ईमान रखो, सब कुछ मुमकिन है, खलुसे दिल से खुदा के पास आओ। इसलिए आपको दुरुस्त इंतखाब करना चाहिए। फिर जिस किस्म की औरत को एक मर्द मुंतखब करेगा वो उसके अजाइम और उसके करदार की अकासी करेगी। अगर कोई मर्द किसी गलत औरत का इंतखाब करता है तो ये उसके करदार की अकासी है। और जो कुछ उसके अंदर है ये दर हकीकत दिखाता है कि उसके अंदर क्या था। एक औरत अकासी करती है कि मर्द के अंदर क्या था जब वो उसे अपनी बीवी होने के लिए चुनता है। वो मर्द की दिली ख्वाहिशात का इजहार होती है, बज़ाहिर वो कुछ भी कहे, लेकिन ये देखें कि उसने शादी किससे की है। मैं किसी आदमी के दफ्तर में जाता हूँ जो अपने आप को मसीह कहता है और वहाँ दीवारों पर हर तरफ बेहयात तस्वीरें लगी होती हैं और वहाँ हयात म्यूजिक चल रहा होता है। मैं परवाह नहीं करता फिर वो क्या कहता है, मैं उसकी गवाही का यकीन नहीं करता क्योंकि उसकी रूह दुनियावी गजा पर पल रही है। मसलन अगर वो किसी गाने वाली लड़की से शादी करता है या किसी जिनसी मलका या किसी हसीना से या जदीद अवारा से शादी करता है तो इसे क्या कहा जाएगा। ये अकासी है, ये उसके जहन में मौजूद ख्वाहिशात की अकासी है कि उसके मुस्तकबिल के घर में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि वो उसे अपने बच्चों की परवरिश के लिए चुन रहा है। और जो कुछ वो खुद करती है वही कुछ वो उन बच्चों को सिखाएगी। बस इससे मालूम हो जाता है कि मर्द के अपने अंदर क्या है। एक मर्द जब इस तरह की औरत को लेता है तो इसी से मुस्तकबिल के बारे में उसकी सोच का इजहार होता है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक मसीही ऐसा काम कर सकता है? नहीं जनाब, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। एक सच्चा मसीही इस तरह की हुसन की मलका गाने वाली या जिनसी मलका की हर गिज तलाश नहीं करेगा। वो मसीही करदार वाली औरत का मुतलाशी होगा। अब आपको सारी चीजें नहीं मिल सकती हैं। हो सकता है एक ऐसी लड़की हो जो बहुत ही खूबसूरत हो और दूसरी लड़की ऐसी हो सकती है कि उसकी शक्लो सूरत पहली वाली से बेहतर ना हो, और आपको एक के लिए दूसरी की कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। लेकिन अगर वो किसी खातून या औरत के कदो कामत में नहीं है तो वो मुझे परवाह नहीं, वो खूबसूरत है या नहीं। बेहतर है आप उसके किरदार को देखें, चाहे वो खूबसूरत है या नहीं। अब इससे ये जाहिर होता है, अगर कोई मसीही एक बीवी का इंतखाब करता है तो उसे एक हकीकी नए सिरे से पैदा शुदा औरत का इंतखाब करना चाहिए। इससे कता नजर कि वो दिखने में कैसी लगती है, ये वही है जो वो है, जो उससे ऐसा बनाता है। और फिर ये बात उस आदमी के अपने खुदा परस्ती के किरदार की अकासी करती है और पता चलता है कि उसके दिमाग में क्या है और मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसके खानदान की परवरिश अब वो औरत करेगी, क्योंकि यही उसके मुस्तकबिल का मंसूबा है। अगर वो इन मॉडर्न गिरी हुई जिनसी मलका जैसी लड़कियों में से किसी एक के साथ शादी करता है तो वो क्या तवक्को कर सकता है, तो फिर वो आदमी किस किस्म के घर की उम्मीद लगा सकता है। अगर वो किसी ऐसी लड़की से शादी करे जिसमें इतना भी इखलाक ना हो कि वो घर में रहकर घर की देखभाल कर सके, बल्कि किसी और के दफ्तर में काम करने की ख्वाहिशमंद हो, तो वो किस किस्म की घरेलू खातून होगी। फिर आपको बच्चे संभालने और बाकी चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा, ये हकीकत है। अब मुझे औरतों के काम करने का ये जदीद शौक कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। जब मैं औरतों को पुलिस की वर्दी पहने हुए मोटरसाइकिलों पर सवार होकर शहर के चक्कर लगाते हुए देखता हूँ, तो ये किसी भी शहर के लिए बेइज्जती की बात है कि औरत को ऐसा काम करने की इजाजत दी जाए। समझे समझे। जबकि बहुत से मर्द बेरोजगार हैं, इससे हमारे शहर की जदीद सोच का इजहार होता है, इससे गिरावट का इजहार होता है। हमारी औरतों को इस तरह बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें इस तरह के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जब खुदा ने किसी मर्द को बीवी दी तो उसने उसे निजात के बाद सबसे बड़ी चीज दी जो वो उसे दे सकता था। लेकिन जब कोई औरत मर्द की जगह लेने की कोशिश करती है, तब वो बदतरीन चीज बन जाती है जो मर्द ने कभी हासिल की है। अब ये दुरुस्त है, समझे। अब हम इसका रूहानी तौर पर लागू होना देख सकते हैं। मैं जानता हूँ ये बुरी बात है, आपके ख्याल में भी बुरी है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हमें इसकी परवाह नहीं ये बात कितनी बुरी है, हमें हकाई का सामना करना है। ये वो बात है जो बाइबल सिखाती है, समझे। अब हम यहाँ साफ तौर से रूहानी मंसूबा देख सकते हैं, जो खुदा का मंसूबा उसके मुस्तकबिल के घर और उसकी मुस्तकबिल की दुल्हन के लिए है, वाज़े नजर आता है। अगर कोई शख्स किसी जिंसी मलका से शादी करता है तो आप समझ जाएं वो मुस्तकबिल के लिए क्या तलाश कर रहा है। अगर कोई शख्स ऐसी औरत से शादी करता है जो घर में नहीं रुकेगी तो आप समझ जाएं वो मुस्तकबिल के लिए क्या तलाश कर रहा है। और मैं एक बार, ये होलनाक बात है लेकिन मैं इसे कहने की जरूरत महसूस करता हूँ, और मैं आमतौर पर मैं जो कुछ कहने की जरूरत महसूस करता हूँ वो मुझे कह देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये खुदा की तरफ से होता है। मैं एक मवेशी पालने वाले आदमी के साथ काम करता था जिसके साथ मैं मवेशी खरीदने जाया करता था, और मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी हमेशा बोली लगाने से पहले बछिया के चेहरे की तरफ देखता था, फिर वो उसके सर को देखता था और इधर उधर से देखता था। मैंने उसके तौर तरीके देखे, उसकी पैरवी की, और वो उसे ऊपर नीचे से देखता था। हालांकि वो दिखने में ठीक लगती थी, लेकिन वो फिर भी घूमता और उसके मुंह को देखता था, और कभी कभार वो अपना सर हिलाता और वहां से चला जाता था। मैंने कहा, जेफ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, पूछो बिल। मैंने कहा, आप हमेशा गाय के मुंह को क्यों देखते हैं। मैंने कहा, वो बड़ी अच्छी मोटी ताजी गाय नजर आती है। उसने कहा, लड़के, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और जब उसने बताया तो मैं समझ गया। कहा, मुझे परवाह नहीं कि उसकी बनावट कैसी है, वो सर से पांव तक दुरुस्त हो सकती है। लेकिन अगर उसके चेहरे में जंगली गुरपन दिखाई दे तो तुम उसे कभी ना खरीदना। कहा, जेफ, ऐसा क्यों है। खैर, उसने कहा, पहली बात ये है, कहा, वो कभी आराम से खड़ी नहीं होगी। और उसने कहा, दूसरी बात ये है, वो अपने बछड़े की कभी माँ नहीं बनेगी। और कहा, अब उन्होंने इसे बाड़े में बंद किया हुआ है, इसी वजह से ये मोटी है। अगर तुम इसे इसके जंगली गुरपन के साथ अकेला छोड़ दो तो تو یہ خود کو موت کی طرف لے جائے گی۔ میں نے کہا، آپ جانتے ہیں میں نے بھی ایک بات سیکھ لی ہے، مجھے یقین ہے یہ اصول عورتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، جو آوارہ جنگلی اور نامناسب دکھائی دیتی ہیں وہ تمام جو اپنی آنکھوں کے حلقوں پر نیلے رنگ کی کوئی چیز لگاتی ہیں، لڑکے ان سے دور رہنا بہتر ہے۔ اور میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہوں گا، میرا نہیں خیال کہ یہ چیز اسے ایک مسیحی بناتی ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ ٹیلی ویژن اور اخبار اسے کتنا حسین کہتے ہیں، یہ انتہائی خوفناک اور احبت ناک نظارہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہے۔ میں نے یہاں پہلی مرتبہ کلیفٹن کیفیٹیریا میں ایک صبح ناشتے کے وقت دیکھا تھا، میں نے کچھ نوجوان عورتوں کو اندر آتے دیکھا۔ میں اور بائی اورگن برائٹ تھوڑی دیر پہلے ہی اندر آئے تھے، اور بائی نچلی منزل پر گیا ہوا تھا، اور میں نے ایک لڑکی کو اندر آتے دیکھا۔ میں نے سوچا، خیر میں نہیں جانتا تھا، میں نے یہ چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور وہ ایک قسم سے یوں تھی، وہ دیمک کی کھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں یہ عجیب قسم کی چیز ہوتی ہے، میں اسے مزاق کے طور پر نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ جانتے ہیں میں نے کوڑی دیکھے ہیں، میں ایک مشنری ہوں، آپ جانتے ہیں میں نے بدسورتی کی تمام اقسام دیکھی ہیں اور بیماریاں، اور میں اس جوان عورت کی جانب جانے لگا تھا تاکہ اسے بتاؤں کہ میں ایک خادم ہوں، میں بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں، کیا آپ چاہیں گی میں آپ کے لیے دعا کروں؟ اور میں نے ایسی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور پھر دو تین اسی طرح کی اور اندر آ گئی۔ میں رک گیا اور انتظار کرنے لگا، اور بائی اورگن برائٹ بھی آ گیا۔ میں نے کہا، بائی اورگن برائٹ شاید وہ یہاں موجود ہے۔ میں نے کہا، اس عورت کے ساتھ کیا مسئلہ ہے دیکھیں؟ اور اس نے کہا، وہ رنگ ہے۔ میں نے کہا، اچھا میرے خدایا، سمجھے؟ آپ جانتے ہیں میں نے سوچا تھا انہیں ضرور ایسی عورت کو ہسپتال میں رکھنا چاہیے تاکہ یہ مرض دوسری عورتوں کو نہ لگ جائے، لیکن آپ جانتے ہیں آپ کو منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے، دعا کرنی ہوتی ہے جب آپ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے وعدے کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ دلہن جس کا کوئی شخص انتخاب کرنے جا رہا ہے تو وہ اپنے کردار کی عکاسی کرنے جا رہا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اپنے اندر کیا ہے۔ اب کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو روح القدس سے مامور ہو وہ اس طرح کی عورت کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے؟ بھائی میں نے تو ایسا نہیں دیکھا ہے، اب ممکن ہے میں ایک بوڑھا خبتی ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں میں یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیں، غور کریں، کیونکہ وہ اپنے اندر کی کیفیت کا اظہار کرنے جا رہا ہے۔ دلہن اس کے مستقبل کے گھر کو بنانے میں اس کی مددگار ہے۔ پھر اب آئیں ہم اپنا دھیان ایک لمحے کے لیے روحانی پہلو کی طرف لگاتے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کلیسیا جو دنیا میں ہے، دنیا کے طور طریقوں پر چلتی ہے، دنیاوی انداز کی امید لگائے بیٹھی ہے، دنیاوی کاموں میں حصہ لیتی ہے، اور خدا کے حکموں کو یوں سمجھتی ہے کہ جیسے انہیں خدا نے کبھی لکھا ہی نہیں تھا، تب آپ فوراً تصور کر سکتے ہیں کہ مسیح ایسی دلہن کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ کیا آپ آج کے زمانے کی جدید کلیسیا کو دلہن تصور کر سکتے ہیں؟ میرا خداوند تو نہیں کرے گا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں بڑی مشکل سے دیکھ سکتا ہوں۔ نہیں، یاد رکھیں، ایک مرد اور اس کی بیوی ایک ہوتے ہیں۔ کیا آپ کسی ایسی شخصیت کے ساتھ شامل ہونا پسند کریں گے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو جو اعتماد مجھے آپ پر ہے وہ مایوسی میں بدل جائے گا۔ اور پھر خدا کس طرح ایک باقاعدہ تنظیمی قصبی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتا ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں خدا ایسا کرے گا؟ وہ دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے ہیں، خدا ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ کلیسیا کے اندر خدا کا کردار موجود ہونا چاہیے، ایک حقیقی اصل اور نئے سرے سے پیدا شدہ کلیسیا میں وہی کردار ہونا چاہیے جو مسیح میں تھا، کیونکہ شوہر اور بیوی ایک ہوتے ہیں، اور اگر مسیح نے ہر وہ کام کیا جس میں خدا کی خوشنودی تھی اور اس کے کلام کو قائم رکھا اور اس کے کلام کو ظاہر کیا، تو اس کی دلہن کو بھی بالکل اسی قسم کی خصوصیت کا حامل ہونا پڑے گا۔ وہ کسی بھی طرح ہرگز کوئی تنظیم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے پھر چاہے آپ کتنا ہی کہنا چاہیں نہیں، لیکن وہ کسی بورڈ کے زیر نگرانی ہے جو اسے کام کرنے اور کام نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور کبھی کبھی حقیقی کلام سے لاکھوں میل دور ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ ہم حقیقی رہنما سے دور رہیں جسے خدا نے کلیسیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے کبھی ریاستی پریس بیٹرز نہیں بھیجے ہیں، اس نے کبھی بشپ، کارڈینل पादरी और पोप नहीं भेजे हैं, उसने कलीसिया के लिए रूह कुद्दस को भेजा है ताकि कलीसिया की रहनुमाई करे। जब वो यानी रूह कुद्दस आएगा, वो तुम्हें तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, तुम पर वो बातें जाहिर करेगा जो मैंने तुम्हें बताई हैं, और तुम्हें याद दिलाएगा और आने वाली बातों की तुम्हें खबर देगा। इस काम के लिए रूह कुद्दस था, लेकिन जदीद कलीसिया इस बात से नफरत करती है, वो इसे पसंद नहीं करती है। बस वो मसीह की दुल्हन कैसे हो सकती है? आजकल के लोग जदीद तंजीम का इंतखाब करते हैं, ये क्या है? ये चीज कलाम पाक के बारे में उनकी नाकद समझ को जाहिर करती है। मेरा मकसद चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद कलाम को गहराई तक पहुंचाना है ताकि आपको सब कुछ मालूम हो जाए। मैंने बहुत से जोड़ों की शादी करवाई है, लेकिन ये हमेशा मुझे मसीह और उसकी दुल्हन की याद दिलाती है। थोड़ा अरसा हुआ है, जितने लोगों की शादियां मैंने की हैं, उनमें से एक शादी मेरी जिंदगी में इंतहाई गैर मामूली थी। ये बहुत साल पहले की बात है, जब मैं एक नौजवान खादम था। मेरा भाई PWA में काम करता था। मैं नहीं जानता कि मेरी उम्र का कोई और बूढ़ा शख्स अब भी इतने वाकयात याद रख सकता है या नहीं, और ये एक ऐसा मंसूबा था जो हुकूमत के पास था, और मेरे भाई ने तकरीबन 30 मील तक काम किया था। वो पानी जमा करने के मंसूबे के लिए कुछ जिले खोद रहे थे, और वहाँ एक लड़का था जो उसके साथ काम करता था। इंडियाना पुलिस से था, तकरीबन हो जेफरसन विल से तकरीबन 100 मील ऊपर जहाँ मैं रहता था। और वहाँ एक दिन उसने मेरे भाई से कहा, उसने कहा मैं चाहता हूँ अगर पादरी की फीस अदा करने के लिए मेरे पास रकम आ जाए तो मैं शादी कर लूं। उसने कहा अपना लाइसेंस बनवाने के लिए मेरे पास काफी रकम थी, लेकिन कहा पादरी की फीस अदा करने के लिए मुझसे रकम जमा नहीं हो रही। डॉग ने कहा खैर मेरा भाई खादम है और वो शायद तुम्हारा निकाह कर दे। उसने कहा वो लोगों से ऐसे कामों के लिए पैसे नहीं लेता है। उसने कहा क्या तुम अपने भाई से पूछोगे कि वो मेरी शादी कर देगा? खैर उस रात मेरे भाई ने मुझसे पूछा। मैंने कहा अगर उसने या उन दोनों में से किसी ने पहले शादी नहीं की है और वो ऐसे हैं, तो फिर सब ठीक है। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं उससे पूछूंगा। और मैंने कहा अगर ऐसा ही है तो उसे कहो आ जाए। बस जब हफ्ते का दिन आया तो वो लड़का भी आ गया। मैं जब भी इस वाक्य को याद करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उस बरसाती दोपहर में एक पुरानी सी शेवरलेट कार आई जिसकी हेडलाइट्स को तार से बांधकर काबू किया गया था, लेकिन फिर भी वो ऊपर की तरफ बाहर निकली हुई थी। ये वाकया मेरी बीवी की वफात के कुछ देर बाद हुआ था। तब मेरे पास दो कमरे थे जिन्हें मैं दुरुस्त कर रहा था, और डॉग वहाँ ऊपर मेरे साथ था, और हम उनका इंतजार कर रहे थे। और जब वो लड़का कार से उतरा तो मैंने अंदाजा लगाया, क्योंकि मेरे ख्याल से वो मुझे या किसी को भी दूल्हे की तरह दिखाई नहीं दे रहा था। जी हाँ, मैंने $1.5 में बहुत खूबसूरत जूते का जोड़ा खरीदा हुआ था, और उसने बहुत पुराने जूते पहन रखे थे, और उसकी पतलून भी खस्ता हाल थी, और उसने पुरानी चचुंदर के चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी। मेरा ख्याल नहीं कि आप में से किसी बुजुर्ग को ये याद होगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बगैर धोए वॉशिंग मशीन से गुजारा गया है, और वो दागी थी, और फिर उसे इस तरह बांधा हुआ था, एक किनारा ऊपर को उठा हुआ था, और एक छोटी खातून एक तरफ से बाहर निकली, एक छोटे से चेकदार लबास में मलबूस थी। मुझे नहीं मालूम एक मरतबा इस किस्म की चीजों के नाम लेते हुए मुझसे गलती हो गई थी। मुझे यकीन है कि इसे दारीदार कपड़ा कहते हैं। बस ये एक मैंने कहने में फिर गलती कर दी है, मुझसे हमेशा गलती हो जाती है। और मैं कह रहा था वो कार से उतर गई और वो दोनों सीढ़ियों तक आ गए, और जब वो अंदर आए तो उस बेचारी ने उसने मेरा ख्याल है उसने एक स्कर्ट पहना हुआ था, और मेरा नहीं ख्याल कि उसने शूज पहने हुए थे। वो इंडियाना पुलिस से लिफ्ट लेकर आई थी। उसके लंबे लंबे गुंदे हुए बाल उसकी पुश्त पर लटक रहे थे, बड़ी कम उम्र दिखाई दे रही थी। और मैंने उस लड़की से पूछा क्या तुम शादी की उम्र को पहुंच गई हो? उसने कहा जी हाँ जनाब, और उसने कहा मेरे पास मेरे अब्बू और अम्मी की तरफ से तहरीरी इजाजतनामा मौजूद है। उसने कहा मैंने ये इजाजतनामा यहाँ की अदालत में अपना लाइसेंस हासिल करने के लिए दिखाया था। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा लेकिन इस रस्म की अदायगी से पहले मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो बैठ गए। लड़का कमरे को देखे जा रहा था, उसके बाल बहुत बिगड़े हुए थे और बाल कटवाने की जरूरत थी। उसने मसलसल कमरे को देखना जारी रखा। वो मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ तुम उसे सुनो। कहा, ठीक है जनाब। और मैंने पूछा, क्या तुम इस लड़की से मोहब्बत करते हो? उसने कहा, जी हाँ जनाब मैं करता हूँ। मैंने कहा, तुम भी इस लड़के से मोहब्बत करती हो? बोली, जी हाँ जनाब मैं भी करती हूँ। मैंने कहा, अब शादी के बाद क्या तुम्हारे पास अपनी बीवी को रखने के लिए जगह है? कहा, जी हाँ जनाब। मैंने कहा, ठीक है। अब मैंने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम PWA में काम करते हो। और उसने कहा, जी हाँ जनाब। उसकी हफ्तावार उजरत तकरीबन $12 थी। मैंने पूछा, क्या तुम समझते हो कि तुम अपनी बीवी की तमाम जरूरतें पूरी कर सकते हो? उसने कहा, जहाँ तक मुझसे हो सका मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैंने कहा, अच्छा तो फिर ठीक है। और मैंने कहा, अब अगर ये बेरोजगार हो जाए बहन, अगर इसकी नौकरी छूट जाए तो फिर क्या करोगी? तब तुम क्या करोगी? क्या अपने अब्बू अम्मी के घर चली जाओगी? लड़की ने कहा, नहीं जनाब मैं इसके साथ रहूंगी। और मैंने पूछा, अगर तुम्हारे 3-4 बच्चे हो जाएं, उन्हें खिलाने के लिए कुछ ना हो और कोई काम भी ना हो तो जनाब तुम क्या करोगे? फिर तुम क्या करोगे? क्या अपनी बीवी को छोड़ दोगे? कहा, नहीं जनाब मैं कोशिश जारी रखूंगा। हम किसी भी तरह इसका बंदोबस्त करेंगे। मैंने महसूस किया, मैंने देख लिया कि वो वाकई उसे चाहता है और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैंने उनकी शादी कर दी। फिर मैंने सोचा वो उसे लेकर कहाँ गया होगा। कुछ दिन बाद मैंने अपने भाई डॉग से पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, वो न्यू अल्बानी चले गए हैं, जो हमारे नसीब में एक छोटा सा शहर है। और दरिया के करीब मैंने एक टीन की झोपड़ी बनाई हुई थी, जहाँ मैं हर रोज जाया करता था जब मैं लाइन मैन था। बस जब बाकी साथी बैठ जाते थे और एक दूसरे को लतीफे और बाकी बातें सुनाते थे, तो मैं अपना ट्रक लेता था और दरिया की तरफ चला जाता था और वहाँ दुआ में वक्त गुजारता था और अपनी बाइबल का टीन के छपरे के नीचे बैठकर मुतालिया करता था, जहाँ पुराने लोहे का एक कारखाना हुआ करता था। वहाँ नीचे पुरानी माल गाड़ियों का एक ढेर लगा हुआ था और ये आदमी उसी जगह चला गया था और आरी से एक माल गाड़ी के डब्बे में एक दरवाजा बना लिया था और उसके पास अखबार और टेकी बटन थे। आप में से कितने लोग टेकी बटनों के बारे में जानते हैं? इसका मतलब है यहाँ कैंटगी का कोई बशिंदा नहीं है। बस एक गत्ते का टुकड़ा लें, उसमें एक टोपी वाला छोटा सा नोकदार कील चुभो दें, फिर दूसरे हिस्से पर रखकर उसे दबा दें, यही टेकी बटन होता है। बस उन्होंने ये सारा काम मुकम्मल कर लिया था। फिर वो लोहे के गोदाम में गया, वहाँ से कुछ सामान ले आया और ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बना ली और कुछ पुराने डब्बे लिए और उनसे एक मेज बना ली। और एक दिन मैंने सोचा मैं उनके पास जाकर देखूंगा वो कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। तकरीबन 6 महीने पहले मैंने ईवी नाइट की बेटी की शादी ईटी स्लाइडर के बेटे के साथ की थी। ईवी नाइट दरियाए ओहायो के करीब अमीर तरीन आदमियों में से एक था और हो उसके बड़े बड़े कारखाने थे और वो अलग किस्म के मकानों का सामान तैयार करते थे और वगैरह वगैरह। और स्लाइडर ईटी स्लाइडर की रेत और कंकर की कंपनी थी। वो करोड़पतियों के बच्चे थे और मैंने उनकी शादी करवाई थी। मैं वापस एक जगह गया हुआ था, तकरीबन 2 हफ्ते तक इसकी मश कर रहा था और मैं एक बूथ में जाकर एक तकिए पर घुटने टेक लिया करता था और वो सारी शान शौकत और वो सब कुछ जो मैंने कभी देखा है तकरीबन इस जोड़े की शादी के दौरान मैंने देखा था। और जब वो बाहर आए तो देखें, वो ये दूसरा जोड़ा एक छोटे पुराने कमरे में खड़ा हुआ था, जहाँ हमारे पास आराम के लिए सिर्फ एक सोफा और फोल्डेड बेड था। लेकिन इन दोनों का रस्म निकाह एक ही तरह अदा किया गया था। और फिर एक दिन मैंने सोचा कि उस अमीर जोड़े से मिलने जाऊं। उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था क्योंकि उनके वालिद करोड़पति थे। उन्होंने उन्हें बेहतरीन घर फराम किया हुआ था। साफ साफ कहूं तो ईवी नाइट के पहाड़ वाले बड़े महल के दरवाजे के दस्ते 14 कैरात के थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस किस्म के घर में रहते थे। उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। उन्हें हर साल नई कैटिलिक कार मिल जाती थी और जब वो बच्चे ही थे तो वो जो चाहते थे उन्हें मिल जाता था। एक दिन मैं उनकी तरफ गया। अब मेरी उनसे जान पहचान कैसे हुई? उनका एक दोस्त मेरा भी अच्छा दोस्त था। हम आपस में काफी गहरे दोस्त थे और इस तरह मैं उनसे मिला था और वो चाहते थे कि मैं उनकी शादी करूं। बस मैं उनसे मिलने गया। मैं बाहर निकला और मैंने अपनी पुरानी फोर्ड गाड़ी बाहर खड़ी की और मैं सीढ़ियों की जानिब चला और मैं ऊपर गया, लेकिन थोड़ा ज्यादा आगे चला गया और उनकी बातें सुन ली। और वो दर हकीकत शोर कर रहे थे। वो एक दूसरे पर शक करने लग गए थे। वो किसी डांस पार्टी से वापिस आए थे। वो बड़ी हसीन लड़की थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि हुसन की मलका थी। उसने मलका हुसन की हैसियत से कई इनामात, कारें और बाज दूसरी चीजें जीती थी। और मैंने उनको देखा, उनमें से एक इस कोने में बैठा हुआ था और दूसरा उस कोने में बैठा हुआ था। किसी लड़के के बारे में बहस कर रहे थे जिसके साथ वो नाची थी, या किसी लड़की के बारे में कुछ तो था। जब मैं पहुंचा तो वो दोनों एकदम उछले और जल्दी से सेन में एक दूसरे को अपने हाथों से पकड़ लिया और सेन से होते हुए दरवाजे की जानिब चलते हुए आए। कहा, अरे हेलो भाई ब्रैनम, आप कैसे हैं? कहा, बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? और ओ, लड़के ने कहा, मैं हम बहुत खुश हैं। क्यों प्यारी, क्या हम खुश नहीं हैं? और लड़की ने कहा, हाँ प्यारे, समझे? अब आप देखें, आप एक ऐसी चीज सामने ला रही हैं जो हकीकी नहीं है। अब आप आपकी तस्वीर से गर्मी हासिल नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ कलीसियाएं 35 कोस की तस्वीर बनाने की कोशिश करती हैं, जो कि 1000 साल या 2000 साल पहले वाकया हो चुका है। आप आपकी तस्वीर से गर्मी हासिल नहीं कर सकते हैं। 35 कोस आज भी वैसा ही हकीकी है जैसा तब था, समझे? जी हाँ, आग अभी तक नाजिल हो रही है। ये आग की तस्वीर नहीं है, ये हकीकी आग है। बस वो वहाँ इस मकाम पर थे, समझे? मैं तो उस तरह की जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करूँगा। ओ, मैंने सोचा, तुम जानते हो, इस पहाड़ी के नीचे दरिया के किनारे पर एक दूसरा जुड़ा आबाद है। मैंने सोचा एक हफ्ते की दोपहर मैं उधर जाऊँगा और देखूँगा वो किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। बस मैं गिर्द आलूद चेहरे, मैले लिबास और औजारों के साथ था। मैंने सोचा मैं उनकी तरफ चुपके से जाऊंगा। मैं इस तरह चुपके से वहां गया जैसे बिजली गिरने से इंसुलेटर्स टूट जाते हैं या कुछ हो जाता है। और मैं टेलीफोन की तार के करीब से दरिया के साथ साथ बिजली के तार के साथ साथ चला जा रहा था और वहां वो पुरानी शेवरलेट गाड़ी नजर आई। जब मैंने उनकी शादी की थी उसके 1 साल बाद का ये वाकया है। और वहां एक दरवाजा खुला हुआ था और मैं उन्हें बातें करता हुआ सुन सकता था। ये बात रियाकारी लगती है, लेकिन मैं उनके इतना करीब हो गया कि मैं उनकी आवाज सुन सकूं, देखूं कि वो क्या कह रही हैं। मैं वहां खड़ा हो गया और मैं सिर्फ अपने लिए जानना चाहता था। मुझे ये मालूम करना और इस बात का यकीन करना पसंद है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। खुदा के कलाम के बारे में मेरा यही तरीका है। क्या ये सच है या ये सच नहीं है? क्या वो अपना कलाम कायम रखेगा या वो अपना कलाम कायम नहीं रखता है? अगर वो अपना कलाम कायम नहीं रखता तो फिर वो खुदा नहीं है, समझे? वो अपना कलाम कायम रखता है, इसीलिए वो खुदा है, समझे? और मैं मालूम करना चाहता था कि वो कैसे रह रहे हैं। और मैं बड़ी आसानी से चुपके से एक तरफ हो गया। मैंने शोर को कहते सुना, ओ प्यारी, मैं बड़ी शिद्दत से तुम्हारे लिए वो हासिल करना चाहता था। बीवी ने कहा, अब देखो प्यारे। उसने कहा, ये लिबास भी बहुत अच्छा है। कहा, भाई ये भी बहुत अच्छा है। कहा, मैं इसे सराहता हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम है, मैं चुपके से उस दरवाजे की तरफ आ गया जो किसी के अंदर जाने की वजह से थोड़ा सा खुला रह गया था, इसलिए मैं दरवाजे में से अंदर देख सकता था। और वहाँ वो बैठा हुआ था और बीवी शोहर की गोद में लेटी हुई थी और शोहर के बाजू बीवी के गिर्द और बीवी के बाजू शोहर के गिर्द थे। और उसके पास पुरानी तर्ज का झुका हुआ हैट था जिसमें सुराख था और वो ऊपर से मसला हुआ था और उसकी उजरत की रकम भी उसी के ऊपर पड़ी हुई थी। उसने उसे मेज पर रखा हुआ था। कहा, ग्रोसरी के लिए इतना है, इंश्योरेंस के लिए इतना है और गाड़ी के लिए इतना है। और वो अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकते थे। पता चला कि शोर ने किसी दुकान में एक लिबास लटका हुआ देखा था। कई हफ्तों से वो उसे देख रहा था जिसकी कीमत $1 से कुछ ज्यादा थी। वो उसे खरीदना चाहता था। कहा, खैर प्यारी, तुम उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगोगी। और उसने कहा, बीवी ने कहा, लेकिन प्यारे, मेरे पास एक लिबास मौजूद है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, समझे? और वो छोटी सी मलका। और मैंने पीछे हटकर ऊपर की जानिब देखा। मैं दूसरे घर की छत का बुलंद मीनार देख सकता था और मैं कुछ देर खड़ा उसे देखता रहा। मैंने सोचा, दौलतमंद आदमी कौन है? मैंने सोचा, अब बिल ब्रैनम, अगर तुम्हें इन दोनों में से एक जगह का इंतखाब करना पड़े तो तुम कहाँ जाओगे? मैं अपने लिए पहाड़ पर उस खूबसूरत चीज को कभी नहीं लूंगा। मैं इस करदार को एक हकीकी घरेलू खतून के तौर पर लूंगा, यानी उस चीज को जो मुझसे मोहब्बत करे, मेरे साथ रहे, ऐसी हो जो घर बनाने की कोशिश करे, आला किस्म के कपड़े नहीं और बाकी चीजों के लिए आपका खून चूसती रहे, बल्कि ऐसी हो जो आपके वजूद का हिस्सा बन जाए। आपके साथ रहे। ये कैसे हुआ? ये बातें हमेशा मेरे जहन में रहती हैं। एक ने खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया, दूसरे ने करदार का इंतखाब किया। अब आपके लिए इंतखाब का वाहिद यही तरीका है, पहले करदार देखें और फिर अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो अच्छी बात है। गौर करें, खुदा के पहले आदम के पास अपनी बीवी के चुनाव का कोई मौका नहीं था, उसने इंतखाब नहीं किया था। खुदा ने उसके लिए एक औरत बनाई थी, इसीलिए वो उसका इंतखाब नहीं कर सकता था। बस हम देखते हैं कि उस औरत ने आदम को खुदा के कलाम से दूर कर दिया। आदम ने इस मामले के लिए दुआ नहीं की थी, वो मेरी और आपकी मानिंद नहीं था, उसने इंतखाब नहीं किया था। और फिर ऐसा करने से उसने उसे खुदा का बेटा होने की हैसियत से उसके सही मकाम से हटा दिया, और औरत ने उससे जदीद तर्ज जिंदगी का नमूना दिखाया, एक ऐसा काम किया जो उन्हें सचमुच नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके करदार ने साबित किया कि वो गलत थी, उसकी नीयत और मकासद बिल्कुल गलत थे, और उसने अपने दलाइल से आदम को कायल कर लिया कि जो जदीद रोशनी उसने तलाश की है वो जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है, लेकिन वो खुदा के कलाम के बरअक्स था। और आज कितनी औरतें हैं और कितने मर्द हैं, जबकि एक मर्द अच्छी औरत को खुदा से दूर कर रहा है या एक औरत अच्छे मर्द को खुदा से दूर कर रही है, उसको ये बताती है ये मजहब है, तुम पेंटिकॉस्टल लड़के हो, ये मजहब है। वो कहते हैं ओ ये पुरानी तर्ज का है, ये कदीम और फरसुदा है, इसका यकीन ना करो। आपके लिए बेहतर है कि किसी ऐसी लड़की से शादी करने से पहले अच्छी तरह दुआ करें। मुझे इसकी परवाह नहीं वो कितनी हसीन है, यही हसूल मर्द के लिए है। हवा ने आदम को खुदा की मर्जी से दूर ले जाने के लिए कायल कर लिया, यानी उस काम के लिए जो उसे नहीं करना चाहिए था, और यूं पूरी इंसानियत के लिए मौत का सबब बनी। यही वजह है बाइबल औरत को सिखाने और मुनादी करने और हर तरह से खुदा के कलाम को बयान करने से मना करती है। बहनों, मुझे पता है आप में से बहुत सारी कहती हैं खुदा ने मुझे मुनादी के लिए बुलाया है। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, कलाम कहता है ये काम आपके लिए नहीं है। इस बात की इजाजत नहीं है कि औरत सिखाए या हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, ठीक है? लेकिन आप कहती हैं खुदावन ने मुझे इस काम के लिए बुलाया है। मैं एक लम्हा के लिए भी इस पर शक नहीं करता। क्या आपने बलाम के मुतालिक मेरा पैगाम सुना था? बलाम को खुदा ने बराए रास्त साफ फैसला सुना दिया था, ऐसा मत करना, लेकिन उसने अपनी हमाकत जारी रखी। फिर खुदा ने उसे जाने के लिए कह दिया। खुदा आपको मुनादी की इजाजत दे सकता है, मैं नहीं कहता वो नहीं दे सकता, लेकिन ये उसके असल कलाम और मंसूबे के मुताबिक नहीं है, क्योंकि शरीयत के मुताबिक भी औरत को ताबे होना चाहिए, ये सच है, इसीलिए वो इस काम के लिए मुकर्रर नहीं है। अब दोबारा गौर करें कि जिस्मानी दुल्हन किस तरह रूहानी दुल्हन से मुशाबत रखती है। कलाम कहता है कि औरत मर्द के लिए बनाई गई, ना कि मर्द औरत के लिए बनाया गया। अब मैं चंद मिनटों के लिए मसीह की दुल्हन के मुतालिक बात करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको इसका पस्से मंजर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। औरत मर्द के लिए बनाई गई, ना कि मर्द औरत के लिए। यही वजह है कि पुरानी शरीयत के तहत एक से ज्यादा शादियाँ जायज थी। दाऊद को देखें, जिसकी 500 बीवियाँ थी, और बाइबल कहती है वो आदमी खुदा के ऐन दिल के मुताबिक था। हालांकि 500 बीवियाँ थी और सुलेमान की 1000 थी, लेकिन उन औरतों में से कोई औरत दूसरा शोहर नहीं रख सकती थी। आपने शादी और तलाक के मौजू पर मेरी टेप सुनी है, जो कुछ अरसा पहले ट्यूसान के पहाड़ के वाक्य के बाद तैयार की गई थी। मैं वहाँ इसके मुतालिक दुआ कर रहा था। लोगों ने आग के सतून को देखने के लिए, जो पहाड़ को घेरे हुए था, स्कूल बंद कर दिए थे। वो मखरूती शक्ल में आगे पीछे और ऊपर नीचे गर्दिश कर रहा था। यहाँ के लोग इस बारे में जानते हैं, वहाँ उन्होंने इसे देखा था। और यही है, जब खुदावन ने मुझे शादी और तलाक के मुतालिक सवालात पर सच्चाई बताई थी, अगर एक साइड इधर जा रही है और एक साइड उधर जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई होनी चाहिए। 7 मोहरों के बाद खुदावन ने इस सच्चाई को जाहिर कर दिया था। अब गौर करें, औरत एक से ज्यादा शोहर नहीं रख सकती, क्योंकि औरत मर्द के लिए बनाई गई, ना कि मर्द औरत के लिए। 500 औरतें दाऊद की बीवियां थी, और ये एक मिसाल थी। जब मसीह 1000 साल बाद शाही के तख्त पर बैठेगा, तो उसकी दुल्हन फर्दे वाहिद नहीं होगी, بلکہ وہ دلہن لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہوگی مگر ایک دلہن کہلائے گی. اور انفرادی طور پر داؤد کی بہت ساری بیویاں تھیں لیکن مجموعی طور پر وہ سب ایک بیوی کی مثال تھی. جس طرح تمام ایمانداروں کا بدن مسیح کی دلہن ہے کیونکہ یہ ایک عورت ہے وہ مرد ہے. اب ہم مسیح کے لیے بنائے گئے تھے, مسیح ہمارے لیے نہیں بنایا گیا تھا. یہ وہ کام ہے جو آج کل ہم نصابی کتب میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کلام کو جو کہ مسیح ہے اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ہمیں اپنے آپ کو کلام کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی فرق ہے. جب کوئی مرد کسی خاندان میں سے کسی لڑکی کا انتخاب کرے تو اسے اس کے حسن پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حسن دھوکھا ہے اور خوبصورتی جدید دنیا کی خوبصورتی شیطان سے ہے. او میں نے کسی کو کہتے سنا ہے اے مناد یہاں احتیاط کر. میں کہتا ہوں اس زمین کی تمام چیزیں جو خوبصورت کہلاتی ہیں پوری طرح شیطان کی طرف سے ہیں. میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا. تو پھر آئیں اس بیان کی روشنی میں خدا کے پاک کلام کے مطابق تلاش کریں, دیکھیں آیا یہ سچ ہے یا نہیں. اور آپ میں سے کچھ عورتیں حسین بننا چاہتی ہیں, دیکھتے ہیں حسن کہاں سے آتا ہے. ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں شیطان اتنا خوبصورت تھا کہ فرشتوں کو بھی دھوکھا دے دیا. وہ ان سب سے زیادہ خوبصورت فرشتہ تھا. اس سے نظر آتا ہے کہ حسن شیطان کے پاس ہے. امثال میں سلیمان کہتا ہے حسن ایک دھوکھا ہے. یہ سچ ہے, گناہ بڑا خوبصورت ہے, یقیناً وہ ہے, وہ پرکشش ہے. میں آپ سے کچھ پوچھنا اور آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ چند منٹ اس پر غور کریں. دنیا کے تمام جانداروں میں, پرندوں میں, جانوروں میں, انسانوں کے علاوہ تمام حیوانی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ نر خوبصورت ہوتا ہے, مادہ نہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھ لیں ہرنیوں میں, دیکھ لیں نر ہرن بڑا قد آور اور خوبصورت سینگوں والا ہوتا ہے جبکہ ہرنی پست قد ہوتی ہے. مرغیوں میں دیکھ لیں, مرغی کے پر چھوٹے اور دبے نما ہوتے ہیں جبکہ مرغے کے پر بڑے اور خوبصورت ہوتے ہیں. نر پرندے اور مادہ پرندے کو دیکھیں, نر بطخ اور مادہ بطخ کو دیکھیں, سمجھے؟ اور دنیا میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جو ایسا بنایا گیا ہو جو دھوکہ دے سکے اور عورت کی طرح گراوٹ کا سبب بنے. اب بہن جی اٹھ کر باہر مت جائیں, صرف انتظار کریں جب تک ہم اس کا اختتام نہ کر لیں, سمجھے سمجھے. کوئی بھی مادہ عورت کے علاوہ بد اخلاق نہیں ہو سکتی ہے. آپ کتے کو پلید اور سور کو ایک خنزیر کہتے ہیں, لیکن اخلاق کے لحاظ سے یہ دونوں یہاں کے آدھے فلمی ستاروں سے زیادہ اچھے ہیں. وہ اخلاقی طور پر اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ واحد عورت ہی تھی جو آلودگی کے لیے اس طرح بدل گئی. یہ سچ ہے. دیکھیں خوبصورتی عورت کو کس طرف لے گئی. اب آج بھی یہی کچھ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں خوبصورتی میں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ پل برائن کی مثال لیں. کیا آپ نے کبھی اس کی تصویر دیکھی ہے؟ یہ امریکہ کی بڑی حسینہ سمجھی جاتی ہے. سکولوں میں کوئی سکول کا بچہ ایسا نہیں ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہو اور اس کے پاس اس کی تصویر نہ ہو. کیا آپ جانتے ہیں اسے اسی طرح ہونا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بائبل کہتی ہے ایسا ہی ہوگا؟ کیا آپ کو علم ہے پہلی مرتبہ گراوٹ عورتوں کی وجہ سے آئی تھی اور گراوٹ اختتام بھی اسی طرح ہوگا. عورتیں اختیار حاصل کر کے مردوں پر حکمرانی شروع کر دیں گی اور وغیرہ وغیرہ. کیا آپ جانتے ہیں کلام مقدس نے اس کا ذکر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس دور میں یہ مرد کا لباس پہنتی ہیں اور اپنے بال کٹواتی ہیں. وہ سب کام کرتی ہیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں عورت کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں کیا کر رہی ہیں تب آپ دیکھیں گے کہ چرچ کیا کر رہا ہے. یہ درست ہے. اب یہ بات بالکل سچی ہے جیسے خدا کا کلام سچا ہے. اور کوئی مادہ ایسی نہیں بنائی گئی جو عورت کی طرح گراوٹ کا سبب بنے. اور ابھی تک اس کے ذریعے ایسا ہی ہو رہا ہے. عورت بنیادی تخلیق نہیں ہے باقی تمام مادائیں بنیادی تخلیق ہیں. پرندوں کے نر اور مادہ دونوں ہیں, جانوروں کے نر اور مادہ دونوں ہیں, لیکن انسانی زندگی میں خدا نے صرف ایک مرد کو بنایا, عورت کو خدا نے مرد میں سے بنایا, اور ایک عورت مرد کی زمینی پیداوار ہے, کیونکہ خدا نے اس چیز کو تخلیق نہیں کیا تھا. کلام مقدس میں سے تلاش کریں, یہ بالکل درست ہے. نہیں جناب, یہ خدا کی بنیادی تخلیق نہیں ہے. خدا نے اسے مرد کے اندر رکھا ہوا تھا, لیکن اگر یہ اپنے آپ کو درست رکھے تو اس کا اجر مرد سے کہیں بڑھ کر ہے. عورت کو آزمائش کے مقام پر کھڑا کیا گیا ہے, عورت کے وسیلے موت آئی, یہ موت کی ذمہ دار ہے, لیکن پھر خدا نے رخ بدلا اور ایک عورت کے وسیلے زندگی کو واپس لایا, یعنی ایک فرما بردار عورت کے وسیلے اپنے بیٹے کو لایا. لیکن ایک بری عورت بدترین چیز ہے اور کوئی اتنا گرا ہوا نہیں ہو سکتا ہے. کائن شیطان کے بیٹے نے سوچا خدا خوبصورتی کو قبول کرتا ہے, وہ آج بھی ایسا ہی سمجھتا ہے. کائن شیطان کا بیٹا تھا. اب آپ کہتے ہیں ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, لیکن میں آپ کے اطمینان کے لیے کچھ بیان کرتا ہوں. بائبل کہتی ہے کہ وہ اس شریر سے تھا, اسی لیے یہ طے ہے. ٹھیک ہے, اب وہ شیطان کا بیٹا تھا اور اس نے سوچا میں عبادت کے لیے قربانگاہ کو بہت زیادہ خوبصورت بناؤں گا اور خدا اس کی بڑی قدر کرے گا. وہ آج بھی ایسا ہی سمجھ رہی ہیں. یقیناً یہ ہم ایک عالی شان عمارت بنائیں گے, ہمارے پاس بڑی بڑی تنظیمیں ہوں گی, ہم سب سے عالی شان عمارت بنائیں گے, اعلیٰ لباس میں ملبوس لوگ اور نہایت مہذب عہدے دار مقرر کریں گے. کبھی کبھی تو خدا ان باتوں سے کروڑوں میل دور ہوتا ہے, یہ سچ ہے, پھر بھی یہ کلیسیا ہے. بس اگر خدا صرف پرستش کی قدر کرتا تو خلوص اور قربانی کا جذبہ کائن میں بھی اتنا ہی تھا جتنا حابل میں تھا. لیکن حابل نے مکاشفہ سے معلوم کیا کہ وہ پھل سیب نہیں تھا جو اس کے والدین نے کھایا تھا. میں یہاں ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو ایک خادم کو زیب نہیں دیتی, لیکن بہرحال میں پھر بھی وہ کہنے جا رہا ہوں. میں نے دوسرے لوگوں کو ایسی باتیں کہتے سنا ہے, بس میں نے مذاق کرتے سنا ہے, لیکن میرا مقصد ایسا نہیں ہے, اس لیے میں یہ کہتا ہوں. اگر سیب کھانے سے عورتوں کو احساس ہو جائے کہ وہ ننگی ہیں تو ہمیں دوبارہ انہیں سیب کھلانے چاہیے. سمجھے میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں, لیکن موضوع تبدیل ہو جائے گا. میں نے آپ کو یہاں رکا ہوا ہے اور عورتوں کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو ایک منٹ کے لیے آرام دینا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد کچھ اور بات ہے. اب غور کریں, اب یہ سیب نہیں تھے, ہم یہ جانتے ہیں. تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کلیسیا بھی ان دنوں میں کامیاب ہو گئی ہے, جس طرح باقی انسان کامیاب ہو گئے ہیں, یہ بھی سائنسی بنتی جا رہی ہے. وہ تصویروں اور بڑے بڑے میناروں کی کشش سے متاثر ہو کر سائنسی طرز کی کلیسیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بہت بری بات ہے کہ پینتیکوسٹل لوگ بھی اسی نقشے قدم پر چل رہے ہیں. آپ کے لیے بہتر ہوتا کہ آپ گلی کے کونے پر کھڑے ہو کر دف بجا رہے ہوتے اور خدا کا روح آپ کی چاروں طرف ہوتا, لیکن آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ بھی منظم ہو چکے ہیں. اس نے یہی کیا ہے, سمجھے. کلیسیائیں سائنسی بننے کی کوشش کر رہی ہیں, اور یاد رکھیں انسان سائنس میں جتنی ترقی کرتا جا رہا ہے وہ ہر روز اتنا ہی خود کو قتل کرتا جا رہا ہے. جب انسان نے بارود ایجاد کیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جب انسان نے گاڑی بنائی تو اس نے بارود سے بڑھ کر لوگوں کو مارا. اب انسان نے ہائیڈروجن بم بنا لیا ہے, حیرانگی ہے, وہ اس کا کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے, یہی حال کلیسیا کا ہے. جیسے جیسے یہ سائنس اور انسان کے تیار کردہ لائے عمل سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اتنا ہی پہلے مقام کی نسبت یہ آپ کو خدا سے دور اور موت کے قریب لے کر جا رہی ہے, یہ سچ ہے. اپنی کلیسیا کا انتخاب اس طریقے سے نہ کریں جس طریقے سے آپ نے اپنی بیوی کا انتخاب کیا تھا, سمجھے. سائنس نے کلیسیا کے لیے جو کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے, لیکن اس معاملے میں آپ کی بہتری کلیسیا سے دور رہنے میں ہے. اس نے رنگ پاؤڈر اور اس طرح کی دیگر چیزیں بنائی. خدا کے کلام کی خصوصیت کا انتخاب کریں. اب آئیں آج کی قدرتی دلہن کا مقابلہ آج کی نام نہاد چرچ کی دلہن سے کرتے ہیں. ایک ایسی عورت کا تصور ذہن میں لائیں جس کی آج شادی ہو رہی ہے. اب ذرا دیکھیں سائنس نے اس کے لیے کیا کیا ہے. سب سے پہلے اس نے اپنے بال کٹوائے ہیں, جیسے جیکولین کینیڈی کے بال ہیں, دیکھیں یہ کچھ اسی طرح کے ہیں. اور آپ جانتے ہیں बाइबल क्या कहती है? बाइबल दर हकीकत एक मर्द को ये हक देती है कि अगर वो चाहे तो उसे तलाक देकर रुख्सत कर दे। अगर वो ऐसा करती है, जो औरत बाल कटवाती है वो बेहुर्मती करती है। बाइबल ये फरमाती है, ठीक है, क्या आप ये बात नहीं जानते हैं? ओ हाँ, मैंने कैलिफोर्निया में उनके लिए जो नहीं जानते हैं इस पर बहुत ज्यादा मुनादी की थी, ये दुरुस्त है। ओ जी हाँ, मुझे इसका क्या फायदा है? बहरहाल वो ऐसा कर रहे हैं। आपके लिए ये मुमकिन नहीं कि किसी सूर को लें और उसका नाम तब्दील करके उसे एक बरा बना दें। गौर करें, इसके बाद आप मुझसे नफरत करने लग जाएंगे, लेकिन आप सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगे, समझे? देखें, आए इसका मुवाजना करते हैं। जदीद जमाने की दुल्हन रंग लगाकर कुछ इस तरह की नजर आने की कोशिश करती है, जो वो नहीं है उसका मुंह दिलवाएं। हो सकता है मर्द उसे देखकर भाग जाए, उसके चेहरे से सब कुछ उतार दें, आप डर जाएंगे। और यही हाल कलीसिया का है, जिसका बड़ा सा चेहरा रंगा हुआ है और मुतासर करने के लिए एक मुकम्मल थियोलॉजी है। दोनों के चेहरे पर मस्नूई इंसान का बनाया हुआ हुसन है, खुदा का बनाया हुआ हुसन नहीं है, लेकिन खूबी दोनों में एक भी नहीं है। गौर करें, ये सब कुछ शैतान की तरह धोखा देना है। अब जदीद जमाने की दुल्हन के साथ कलीसिया का मुवाजना करें। मुख्तसर लबास पहनती है, पतलून पहनती है, बाल कटवाती है, ऐसे कपड़े पहनती है कि मर्दों जैसी नजर आए, और ऐसे पास्टर की बात सुनती है जो उसे कहता है ये सब कुछ ठीक है। वो धोखा देने वाला है, वो उस तरफ वाली सरजमीन पर नुकसान उठाएगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है, धोखा देने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि वो ऐसी नजर आए जो वो नहीं है। यही कुछ कलीसिया करती है। वो डीडी, पीएचडी, एलएलडी की डिग्रियां हासिल करते हैं ताकि आप कहें हमारा पादरी ये वो या फला फला है। मुमकिन है वो खुदा के बारे में इतना भी ना जानता हो जितना कोई पोटेंटोट मिस्र की रात के बारे में जानता है। ये दुरुस्त है, ये ठीक है। यूं वो सेमिनरी से इल्मे इलाहियात का तजर्बा हासिल करते हैं, लेकिन खुदा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ये जदीद कलीसिया है और इनके पास इल्मे इलाहियात का बनाव सिंगार है। जी हाँ, इनकी सब औरतें अपनी शानो शौकत से महरूम हो चुकी हैं, अपने कुछ रिकी और कुछ पास्टरों की वजह से जो इनके यहाँ हैं, जैसे एजबल ने वहाँ किया था। कटे हुए बाल, बेहुदा लबास, बनाओ सिंगार और तमाम दूसरी चीजों को इल्मे इलाहियात की चाशनी लगा दी गई थी। इसी तरीके से कलीसिया है, ठीक है, लेकिन इसकी रूहानी शख्सियत उस घरेलू खातून से बहुत दूर है जिसे यीशु मसीह लेने आ रहा है। अगर कोई मसीही किसी ऐसी औरत से शादी करे तो इसका मतलब है वो फजल वाले मकाम से गिर गया है। जब वो ऐसी औरत का इंतखाब करता है तो उसका जायका खुदा के बारे में और उसका जायका घर के बारे में कि घर कैसा होना चाहिए बहुत मुख्तलिफ होता है। नहीं जनाब, ऐसी औरत मसीही जायके के मुताबिक फिट नहीं बैठेगी। इसका रूहानी किरदार पस्तरीन है, ये तंजीमी हुसन और दुनियावी गंदगी में मुर्दा है। बिल्कुल इसी मकाम पर कलीसिया आज खड़ी है। इसने कलाम की बख्शी हुई खसूसियत को शैतान के हाथों और इंसान के बनाए हुए साइंसी मजहब के हाथों बेच डाला है, जबकि इसे हक हासिल था कि खुदा की कलीसिया बनकर खुदा के कलाम के साथ खड़ी रहती और इसके दरमियान रूहुल कुद्दस काम करता और खुदा के कलाम और मोहब्बत में बदन तामीर होता। इसकी बजाय कलीसिया ने ईसाओ की तरह अपना पदेशी हक बेच डाला है और तंजीम बना ली है जो उसे कुछ भी करने देती है, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक चलने देती है। ये दुरुस्त है ताकि वो भी हर दिल अजीज बन जाए जैसे उसकी माँ नासिया रोम में बनी थी। ये खुदा का कलाम है। हो ये किस तरह हमारे पैंती कोस्टल दायरे में भी दाखिल हो चुकी है, ये बहुत बुरा हुआ है मगर हो चुका है। एक मिनट के लिए कैथलिक कलीसिया की रहबा पर गौर करें। वो औरत जो रहबा बनना और आखिरी चोगा हासिल करना चाहती है मुकम्मल तौर पर उस कलीसिया के हाथों बिक जाती है। वो जान, जिस्म और रूह के लिहाज से उस कलीसिया की मलकियत बन जाती है। उसका अपना कोई जेहन नहीं होता है। जब वो आखिरी चोगा हासिल कर लेती है तब उसके पास कुछ नहीं होता, न अपना जेहन, न अपनी मर्जी या तवज्जो दें। शैतान उनको अपनी तरह नकली बना लेता है जैसे वो असली हो। मसीह की हकीकी कलीसिया दुल्हन इसी तरह मसीह और उसके मौदा कलाम के इवज खुद को बेच देती है। जब तक मसीह का जहन आपके अंदर नहीं आ जाता है कितना फर्क है। और आज हम देखते हैं कि जदीद कलीसिया, जदीद दुनियावी कलीसिया, जदीद दुनियावी कलीसिया और रूहानी कलीसिया दोनों ही حاملہ ہو چکی ہیں تاکہ بیٹوں کو جنم دیں. ان میں سے ایک تنظیمی جنم ہے جو کہ انہی دنوں میں سے ایک دن بلا شبہ ہونے جا رہا ہے, جو کہ ورلڈ کونسل آف چرچز میں ہونے والا ہے, اور یہ ایک تنظیم کی شکل میں دنیا میں مخالف مسیح کا جنم ہوگا. یہ بالکل سچی بات ہے. شاید میں اسے دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہ پاؤں, مجھے یقین ہے کہ میں ہوں گا, لیکن آپ نوجوان لوگ یاد رکھیں کہ آپ نے ایک خادم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, یہ آخر کار انجام تک پہنچے گا, اور جب وہ اس ورلڈ کونسل آف چرچز کو تشکیل دیتے ہیں تو یہی حیوان کا نشان ہے, اور وہ اپنے بیٹے مخالف مسیح کو جنم دے گی. دوسری خدا کے کلام سے حاملہ ہوئی ہے اور وہ بدن کو جنم دے گی, یسوع مسیح کے مکمل بدن کو جو کہ دلہن ہے. ابھی مسیح کا بدن مکمل نہیں ہوا ہے. کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں, مرد اور عورت ایک بدن ہوتے ہیں اور مسیح بھی ایک بدن یعنی کلام ہے. دلہن اس بدن کا باقی حصہ بنے گی اور دو مل کر دوبارہ ایک بدن بنیں گے, جیسے آدم ابتدا میں ایک بدن تھا, آدمی اور اس کی بیوی ایک بدن ہوتے ہیں. اب وہ حقیقی دلہن اس طرح خدا کے ہاتھ بکی ہوئی ہے کہ وہ اپنا ذہن استعمال نہیں کرتی ہے. مسیح کا ذہن بلا شبہ مسیح کی مرضی ہے اور اس کی مرضی اس کا کلام ہے. اب انسان کی نام نہاد دلہن کا انتخاب دیکھیں اور آج کی فطری کا روحانی سے موازنہ کریں. ایک جدید ایزبل اپنے اخیب بناؤ سنگار اور دیگر چیزوں کے زیر اثر ہے. اسی طرح کلیسیا کو دیکھیں جو زندہ خدا کے کلام کے لحاظ سے ایک قصبی ہے. بڑی بڑی تنظیمیں, بڑی بڑی عمارتیں, بے شمار دولت, بڑی بڑی تنخواہیں اور تمام بکے ہوئے لوگ ہیں. آدمی پلپٹ پر کھڑے ہو کر حمایت کرتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے اور لوگوں کو اسی طرح چلنے دیتے ہیں. یہ سب دھوکہ ہے, پوری طرح اندھی لودیکیا کی کلیسیا ہے. بالکل اسی طرح ہے جیسا بائبل نے کہا تھا یہ ہوگی. کہتی ہے میں امیر ہوں, میں ملکہ بن بیٹھی ہوں, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ نہیں جانتی کہ تو غریب, کم بخت, اندھی, خوار اور ننگی ہے, اور یہ جانتی تک نہیں ہے. کیا یہ خداوند یوں فرماتا نہیں ہے جو مکاشفہ 3 ہے؟ کیا میں نے اسے کبھی نہیں پڑھا؟ وہ یہی ہے اور یہ جانتی تک نہیں ہے. اس کے بارے میں سوچیں. اگر آپ کسی مرد یا عورت کو بازار میں بتاتے ہیں کہ وہ سراسر ننگے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ وہ برہنہ ہیں, تو وہ کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھیں. کیوں؟ کیونکہ عقل کی کمی ہے اور ان کے ذہن میں خرابی پیدا ہو چکی ہے. اور جبکہ آپ خدا کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, اور یہ روح القدس کا بپتسمہ ہے جو آج ہمارے پاس ہے, اور یہ لوگ کیوں آپ کو اس طرح دیکھنے لگ جاتے ہیں جیسے آپ پاگل ہیں. جب آپ ان کو بتاتے ہیں آپ کو یہ حاصل کرنا چاہیے, آپ کو دوبارہ پیدا ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو بائبل پر ایمان لانے کی ضرورت ہے, وہ کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے یہودیوں کا قصہ ہے, ہماری کلیسیا کا اور طریقہ ہے, کم بخت, خوار, اندھے اور ننگے ہیں, اور یہ جانتے تک نہیں ہے. کیا اور بائبل نے بتایا ہے کہ انہیں ایسی حالت میں آنا ہے. ایک سچا نبی اسے سمجھنے سے کیسے قاصر رہ سکتا ہے میں نہیں جانتا. ہر طرف ہماری کلیسیائیں اسی کی جانب کھینچی چلی جا رہی ہیں. ابھی اس جدید رجحان پر غور کریں. یہ پرانی قصبی اور مکاشفہ 17 کی بیٹیاں ہیں جو غریب, اندھے اور کم بخت لوگوں کو خدا کے کلام کے مخالف اپنے علم الہیات کی تعلیم دے رہی ہیں, اور انہوں نے اس میں غلاموں کی روحیں پائی ہیں, اور مرد اور عورتیں ہر جگہ سے اس کے اندر آ رہی ہیں. لوگوں کو راغب کرنے کی بجائے مسیح اپنے کلام کو ثابت کرتا ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. وہ ایسی کلیسیاؤں کے لوگوں کو متوجہ نہیں کرتا ہے جو بڑی بڑی تنظیموں, بڑے بڑے کارناموں اور بڑے بڑے نظریات اور خوش نما چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, بلکہ خدا کا کلام مسیح کی دلہن کو متوجہ کرتا ہے. اب غور کریں, یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ کس طرح چرچ لوگوں کی توجہ مبذول کرنے کی کوشش کرتا ہے. عمدہ چوگوں سے, کچھ لباس کویر سے, کٹے ہوئے بالوں والی عورتوں سے اور بناؤ سنگار والے چہروں سے, اور ان کے خیال میں وہ فرشتوں کی طرح گاتے ہیں لیکن شیطان کی طرح جھوٹ بولتے ہیں, اور ساری ساری رات رقص کرتے ہیں اور اس بارے میں کچھ نہیں سوچتے ہیں, اور وہ بس یہ سوچتے ہیں یہ سب کچھ درست ہے, یہ خوبصورت ہے. لیکن آپ غور کریں, یہ سب دھوکے بازی ہے, یہ خدا کا کلام نہیں ہے. جبکہ سچی دلہن خدا کے کلام پر عمل کر کے اس کی توجہ حاصل کرتی ہے. اب غور کریں, اب ہم مسیح پر غور کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی اب ایک منٹ ٹھہریں, اس خوبصورتی کے بارے میں کیا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ بائبل یسعیاہ 53:2 میں کہتی ہے کہ جب یسوع آئے گا تو اس میں کچھ حسن و جمال نہیں ہوگا کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. کیا یہ سچ ہے؟ کوئی حسن و جمال نہیں ہے. اگر وہ اس زمانے میں دنیاوی حسن و جمال لے کر آتا جیسے شیطان آج موجود ہے تو لوگ بانگ کر اس کے گرد جمع ہو جاتے اور اسے اسی طرح قبول کرتے جیسے آج کلیسیا کو قبول کرتے ہیں. لوگ اس کا یقین کرتے, اسے قبول کرتے جیسے لوگ شیطان کو آج قبول کرتے ہیں. یقیناً وہ قبول کرتے ہیں, لیکن وہ اس طرح کا حسن و جمال لے کر نہیں آتا ہے, بلکہ وہ ہمیشہ کردار کا حسن و جمال لے کر آتا ہے. دیکھیں, مسیح ایک خوبصورت, عظیم, مضبوط اور موٹا آدمی نہیں تھا. خدا اس قسم کا انتخاب نہیں کرتا ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک نبی ایک بادشاہ منتخب کرنے کے لیے گیا تاکہ یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو بادشاہ بنائے تاکہ سول کی جگہ دوسرا بادشاہ منتخب کیا جائے, اور یسی بڑے بیٹے کو آگے لایا جو اس کا قد آور, مضبوط اور پرکشش لڑکا تھا. اس نے کہا تاج اس کے سر پر خوب سجے گا. نبی اس کے سر پر تیل ڈالنے لگا. اس نے کہا خدا نے اسے نہیں چنا ہے, اور نبی ان میں سے ہر بیٹے کا انکار کرتا گیا حتیٰ کہ وہ ایک چھوٹے سے جھکے کندھوں والے اور سرخ رنگ والے نو عمر لڑکے کے پاس پہنچ گیا, اور نبی نے اس کے سر پر تیل انڈیلا, اور اس نے کہا خدا نے اسے چن لیا ہے. سمجھے, ہم آنکھوں کی پسند کے مطابق چناؤ کرتے ہیں, خدا کردار کے مطابق چناؤ کرتا ہے. کردار یسوع مسیح جیسا کبھی کوئی کردار نہیں ہو سکتا. وہ آپ میں زندہ ہے اور اسی کو ظاہر کرتا ہے. ہم جانتے ہیں یہ سچائی ہے. یہ مسیح کا دنیاوی حسن نہیں ہے جس سے اس کی دلہن متاثر ہوتی ہے, بلکہ یہ اس کا کردار ہے, اور جس کے یسوع کو تلاش ہے وہ کلیسیا کا کردار ہے. بڑی بڑی عمارتیں نہیں ہیں, بڑی بڑی تنظیمیں نہیں ہیں, بہت زیادہ اراکین نہیں ہیں, بلکہ اس کا وعدہ ہے جہاں دو یا تین جمع ہیں میں ان کے درمیان ہوں. سچ ہے جہاں سچا ایماندار اپنی امیدیں وابستہ رکھ سکے, جہاں خدا کا کلام سچائی کے ساتھ ثابت ہو سکے. جو وہ ہے وہ اپنے کلام کے وسیلے انتخاب کرتا ہے, دنیاوی محبت والے گروہ کے وسیلے نہیں. وہ اس سے نفرت کرتے ہیں. اس میں حیرانگی کی بات نہیں, مسیح نے اسے طلاق دے دی ہے کیونکہ اس نے اس کے مکاشفے کو رد کر دیا ہے, اور اب اس کے پاس کوئی مکاشفہ نہیں ہے. اسے اس کی پرواہ نہیں کس طرح یہ اداکاری کرتی ہے اور عمل کرتی ہے, اور اس کے پاس دنیاوی چیزیں کتنی زیادہ ہیں. وہ اس میں کردار یعنی مسیح کا کردار تلاش کرتا ہے. دیکھیں, اب بس تھوڑی دیر کے لیے یہ بات ہے, وہ دلہن کا انتخاب کرتا ہے تاکہ اس کی دلہن میں اس کا کردار نظر آئے. لیکن جدید کلیسیاؤں میں اسی کا فقدان ہے. اس کا پروگرام ان سے لاکھوں میل دور ہے کیونکہ وہ اس سچائی کا انکار کرتی ہیں. بس یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب وہ اس دن کا منتظر ہے تاکہ دلہن ویسی بن جائے. عبرانیوں 13:8, بالکل جیسے وہ تھا اور جیسے وہ ہے, دلہن کو بالکل اس کا گوشت, اس کی ہڈی, اس کی روح اور باقی ہر چیز کی طرح بننا ہے. بالکل اس کی مانند بننا ہے تاکہ وہ دونوں ایک بن جائیں. جب تک کلیسیا ایسی نہیں بن جاتی, وہ ایک نہیں ہے. مسیح کا کردار کلام ہے جو اس زمانے کے لیے ہے. اس کے مطابق ڈلنا ہے, دلہن کو مسیح کی مانند بننا ہے. اب آخر میں ان تمام باتوں کو بیان کرنے کی وجہ بتانا چاہتا ہوں, اور پھر میں گفتگو ختم کر دوں گا. ایک رات تقریباً صبح کے 3 بجے میں جاگ اٹھا. اب میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی شخص اس کا جواب دے, کیا میں نے آپ کو خداوند کے نام سے کبھی کوئی ایسی بات بتائی ہے جو سچی ثابت نہ ہوئی ہو؟ وہ ہمیشہ سچی ثابت ہوئی ہے. بس میری مدد کریں. خدا جانتا ہے یہ سچ ہے. پوری دنیا میں میں نے ہزاروں باتیں بتائی ہیں, ان میں سے ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کا ایک لفظ بھی خدا نے پورا نہ کیا ہو. ہمیشہ کامل طور پر پوری ہوئی ہے. یہاں تک کہ ایک دن جب میں فینکس میں تھا, یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات تھی, تو میں نے آپ کو وہ پیغام دیا تھا جس کا موضوع تھا صاحبو یہ کون سا وقت ہے, اور آپ کو بتایا تھا 7 فرشتے وہاں ملیں گے اور مہریں کھل جائیں گی, اور ایسا ہوا, اور لائف میگزین نے اس پر مضمون شائع کیا تھا. یہ عظیم شعلہ ہے جو ہوا میں بلند ہو رہا تھا, 30 میل اونچا, 27 میل چوڑا تھا, اور سائنس دانوں نے کہا وہ سمجھ نہیں سکے یہ کیا چیز تھی, وہ ابھی تک نہیں جانتے. اور آج رات یہاں اس عمارت کے اندر وہ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت میرے ساتھ کھڑے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا. جیسا اس نے فرمایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا. اس نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو ہونے والی تھی, اور وہ بالکل پوری ہوئی. ہر ایک مہر مکمل طور پر کھولی گئی تھی, اور تمام پوشیدہ بید مکمل طور پر آشکارا ہوئے جو اسلحہ کاروں کے دور میں اور دیگر ادوار میں پوشیدہ تھے. کیسے میں پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوا تھا, ان میں سے 3 یا 4 لوگ اب بھی یہاں موجود ہیں, جی ہاں بلکہ اس سے زیادہ ہیں. پہاڑی کے اوپر جاتے ہوئے روح القدس نے کہا وہ پتھر اٹھا, ہم شکار پر تھے, اس نے فرمایا اس پتھر کو ہوا میں اچھال اور کہہ خداوند یوں فرماتا ہے. میں نے ایسا ہی کیا, نیچے سے ہوا کا مخروطی شکل کا بگولا اٹھا. میں نے کہا 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ خدا کا ہاتھ دیکھیں گے. وہ لوگ इस वक्त भी यहाँ बैठे हुए हैं। उससे अगले रोज तकरीबन 10 बजे मैं वहाँ खड़ा हुआ था। मैंने कहा तैयार हो जाओ, कार के नीचे छुप जाओ, एक तजर्बेकार की तरह। मैंने कहा कुछ होने वाला है। आसमान बिल्कुल साफ था। एक बड़ी गाड़ी में यूं हुआ, आसमान से एक गर्दिश करती हुई आग जोरदार सन्नाटे के साथ नीचे उतर आई और इस तरह दीवारों से टकराई। मैं एन उसके नीचे खड़ा था। मैंने अपनी टोपी उतार दी और सर थाम लिया। वो मुझसे तकरीबन 3 या 4 फीट की बुलंदी पर आ गए और दीवारों के चौगिर्द एक गड़ा सा बना दिया और धमाका हुआ और वो हवा में वापस चला गया। वो फिर घूमता हुआ 3 मर्तबा नीचे आया और 200 गज के इलाके में कांटेदार झाड़ियों को ऊपर से काट दिया। इन साथियों की आवाज़ सुने जो कह रहे हैं आमीन। जब ये वाक्या पेश आया ये वहाँ मौजूद थे, समझे, और 3 धमाके हुए। जब ये कारों के नीचे से और बाकी चीजों के नीचे से बाहर निकले तो सब कुछ वापस जा चुका था। कहने लगे अगर वो आपको छू लेता तो यहाँ एक दब्बा तक बाकी ना बचता। मैंने कहा वो खुदावन था, वो मुझसे बातें कर रहा था। खुदा बगोले में से बोलता है, समझे, और ये आपका वही सतून था जो आप तस्वीरों में खड़ा हुआ देखते हैं। और जब वो ऊपर चला गया तो उन्होंने पूछा ये क्या है। मैंने कहा मगरबी साहिल पर अदालत हो रही है। उससे अगले रोज अलास्का तकरीबन डूब गया था, समझे। वो एक मर्तबा वहाँ टकराया, ये पहला धमाका था। यहाँ आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि इसकी कोई अलामत हो। जैसे एक आदमी ने प्याले में नमक लिया और उसे पानी में डाला और कहा खुदावंद यूँ फरमाता है कि पानी मीठा हो जाए। एक और वाक्य में यीशु ने पानी मटकों में भरवा दिया और उस पानी को मैं बना दिया। आपको कुछ करना होगा ताकि कोई अलामत हो, इसीलिए वो हवा में ऊपर चला जाता था और फिर वापस नीचे आ जाता था। वो एक छोटे बगोले की शक्ल में शुरू हुआ था। 24 घंटों के दौरान उसने पहाड़ को हिला डाला था और उसे काट कर उसके गिर्द एक छोटी सी बना दी थी। रेवरेंड मिस्टर ब्लेयर इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं। ये उस वक्त वहाँ थे और इन्होंने उसके कुछ टुकड़े भी जमा किए थे और वगैरह वगैरह। और यहाँ उनमें से टेरी सोथमैन और बिली पॉल भी खड़े हुए हैं और भाई भी हैं। दूसरे बहुत से लोगों में से कुछ इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं जो उस रोज वहाँ मौजूद थे और पहाड़ के टूटने का सारा वाकया देखा था। ये कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत है। ये माजी में बाइबल के जमाने का वाकया नहीं है बल्कि अब का है, समझे। ये वही खुदा है जिसने हमेशा ये चीजें मुझे दिखाई हैं और ये हर पहर मुकम्मल तौर पर पूरी हुई हैं और इनमें से कभी कोई नाकाम नहीं हुई। अब मुझे खुदावंत पर फख्र है। चंद हफ्ते पहले मैंने एक रोया देखी थी और मैं एक बुलंद जगह पर खड़ा हुआ था और मुझे कलीसिया का पेशगी मंजर दिखाया गया था और मैंने उसे अपनी तरफ आते देखा और मैं मगरिब की तरफ इस तरह अपना मुंह करके खड़ा हुआ था और इस तरफ से औरतों का एक बड़ा प्यारा ग्रुप चलता हुआ आ रहा था। इंतहाई उम्दा लबास, लंबे बाल बेहतरीन तरीके से पुश्त पर पड़े हुए थे, कमीजों के बाजू और स्कर्ट भी साफ सुथरे थे और वो फौजी मार्च का कोई गीत गा रही थी, जैसे मसीह के ऐसे सिपाही आगे बढ़, जंग के लिए कदम बढ़ा, यीशु की सलीब के साथ आगे चल। और जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैं खड़ा हो गया और वहाँ कोई मौजूद था, वो पाक रूह था, खुदा था। उसने कहा ये दुल्हन है। मैंने गौर से देखा और मेरा दिल खुशी से मामूर हो गया। वो इस तरफ से घूमकर मेरी पुश्त की तरफ चली गई। उसके चले जाने के कुछ देर बाद खुदा ने कहा अब जदीद जमाने की कलीसिया का मंजर सामने आएगा और वहाँ एशियाई कलीसिया नजर आई। मैंने इतना गंदा ग्रो कभी नहीं देखा था। मुख्तलिफ कौमों की दूसरी कलीसिया नजर आती गई, वो हैबतनाक दिखाई देती थी। और मैं ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुदा के सामने सच्चाई बयान करने का पाबंद हूँ। और फिर खुदावन ने कहा अब अमेरिका की कलीसिया का मंजर सामने आ रहा है। अगर मैंने कभी कोई शयातीन का ग्रोथ देखा है तो वो यही था। वो औरतें मुकम्मल तौर पर बरहन्ना थी और उन्होंने हाथी की खाल की तरह स्लेटी रंग की कोई चीज पकड़ी हुई थी जिससे वो अपने सामने की जगह छुपा रही थी और उससे ऊपर मुकम्मल तौर पर कोई लबास नहीं था और वो किसी अंदाज में कुछ कर रही थी जैसे आजकल के बच्चे यहाँ नाचते हुए करते हैं। वो घटिया मौसीकी के साथ घूम घूम कर ये कर रही थी। और जब मैंने मिस यूएसए को आते देखा तो मैं तकरीबन बेहोश हो गया। अब ये खुदावंद यूं फरमाता है अगर आप मुझे खुदा का खादम समझते हैं तो अब आप मेरा यकीन करें। मैं ये बात दुनिया में किसी भी चीज के बदले में नहीं कहूँगा। दुनिया में इतनी दौलत नहीं जो मुझे ऐसी बात कहने के लिए मजबूर कर सके जो सच ना हो। और जब वो सामने आई तो वो मेरी जिंदगी की देखी हुई चीजों में से गलीज तरीन चीज थी। मैंने सोचा, ऐ खुदा, मुनादों और हम भाइयों ने तेरे लिए दुल्हन तैयार करने के लिए बड़ी मेहनत की है, जो सबसे बेहतरीन हम कर सकते थे। वो बल खाती जा रही थी और अपने सामने इसे रखा हुआ था जैसे कोई हुला स्कर्ट जैसी कोई चीज हो, इस तरह अपने निचले हिस्से के आगे अपने अज़ा के सामने पकड़ी हुई थी। और यूं वो उन नौजवानों की तरह रक्स कर रही थी और बल खाती जा रही थी जैसे वो नाशायस्ता तमाशों में करते हैं। ये मिस अमेरिका की मसीहत थी। बस मेरी मदद करें, खुदा की मदद से। ये वो बात है जो उसके चेहरे की मानी दिखाई देती है। मैं फौरन, मैं यूं हो गया, मैं बेजान सा हो गया। मैंने सारी कोशिशों और मुनादी मिन्नतों और दुआओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उनमें से हर एक के बाल कटे हुए थे और वो इसे आगे किए हुए नाचती और बल खाती जा रही थी। वो घूमकर उसी तरफ आ गई जहां मैं उस माफुकल फितरत हस्ती के साथ खड़ा हुआ था। मैं उसको देख नहीं सकता था। जब वो बोलता था तो मुझे उसकी आवाज सुनाई देती थी, ठीक मेरे चौगिर्द मौजूद था। जब वो इस तरफ को आई तो अपने आगे उस चीज को रखा हुआ था और उस चीज को अपने आगे पकड़ा हुआ था। बस बल खाती नाचती और हंसती जा रही थी और इसी तरह करती जा रही थी। अब उसके खादम की हैसियत से मैं वहाँ खुदावन की हजूरी में खड़ा हुआ था। मैंने उसके काम के लिए पूरी मेहनत और कोशिश की थी, वो सब जो मैं अच्छी तरह कर सकता था। मैंने सोचा, ए खुदाया, इससे मुझे क्या फायदा हुआ, इससे क्या फायदा हुआ। तमाम रोने चिलाने मिन्नतों मनाजातों बड़े बड़े निशानों अजीब कामों और मौजिज़ों से जो तूने जाहिर किए थे और कैसे मैं वहाँ खड़ा होकर इनके सामने मुनादी करता था और दूसरे काम करता था और घर जाकर रोता था, लेकिन इससे मुझे क्या फायदा हुआ। अगर मुझे तेरे सामने इस तरह की दुल्हन ही पेश करनी थी। और जब मैं वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था तो वो वहाँ से चली गई। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उसके पीछे की तरफ कोई कपड़ा नहीं था। अपने आगे उस छोटे पर्दे को किए हुए वो अपनी टांगें फैला फैला कर यूं रक्स करती जा रही थी और थो वो नहायत बेहुदा अंदाज में मटक मटक कर और अपने जिस्म को हिला हिला कर चल रही थी। अब मैं, आप कहते हैं भाई ब्रहनम, इसका क्या मतलब है? मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो कुछ मैंने देखा था। और जब वो इस हाल में पास से गुजरी तो मैंने उसे देखा, हो मैं बिल्कुल बेजान सा हो गया। मैंने फौरन मुंह फेर लिया। मैंने सोचा, ए खुदा, इस तरह तो मैं मुजरिम ठहरा, इसलिए अब मुझे और जदोजहद करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना काम बंद कर देना चाहिए। मिसेज कॉल विलियम्स, क्या आप यहाँ बैठी हुई हैं? कुछ अरसा पहले आपने एक रात एक ख्वाब देखा था जिसने आपको परेशान कर दिया था और आपने मुझे उसके मुतालिक बताया था। ये वही है, मेरे हाथ से स्टेयरिंग व्हील ले लिया गया है। फिर मैंने सोचा, बेहतर है मैं इसे भूल जाऊं। मैं चला गया। फिर अचानक मैंने दोबारा उनके आने की आवाज सुनी और वही दुल्हन जो इस तरफ से उस तरफ चली गई थी फिर से आती हुई दिखाई दी। वो जवान लड़कियां फिर से यहाँ आ गईं और उनमें से हर एक ने अपना कौमी लिबास पहना हुआ था जहाँ से वो आई थी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और बाकियों ने, हर एक ने उसी किस्म का लिबास पहना हुआ था। सबके बाल लंबे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पहले नजर आई थी। और वो आगे बढ़ती हुई चली आ रही थी। ए मसीही सिपाही, आगे बढ़, जंग करने के लिए कदम बढ़ा। और जब वो सब उस प्रीव्यू स्टैंड के पास से गुजरी जहां हम खड़े थे तो एकदम सबकी नजरें इधर लग गई और फिर वो वापस मुड़ी और मार्चिंग करती हुई चली गई और उन्होंने सीधा आसमान की तरफ जाना शुरू कर दिया। और इसी तरह दूसरा ग्रुप एक पहाड़ी के किनारे पर चला गया और नीचे गिर गया, लेकिन उन्होंने आसमान की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। और जब वो आसमान की तरफ मार्च कर रही थी तो मैंने पीछे दो छोटी लड़कियों को देखा। ऐसे लग रहा था कि वो गैर मुल्की लड़कियां हैं, जैसे स्वीडन या स्विट्जरलैंड या किसी और मुल्क से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया और मैंने कहा, ऐसा मत करो, इस तरतीब से बाहर मत निकलो। और जब मैं इस तरह चीखा तो मैंने रोया के दौरान देखा, मैं अपने हाथ उठाए वहाँ खड़ा था। मैंने सोचा, अच्छा इसी वजह से आज रात मैंने ये सब कुछ कह दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी सोच से ज्यादा देर हो चुकी है? क्या दुल्हन को पहले से बुलाया, चुना और मोहर बंद किया गया है? आप जानते हैं वहाँ कोई अजाफी शख्स दाखिल नहीं होगा, क्या ये मुमकिन हो सकता है? ओ जी हाँ, ओ जी हाँ। याद रखें, मैंने उस रोज ناشتے پر کیا کہا تھا؟ نر اور مادہ کی افزائش نسل کے سلسلے میں لاکھوں جرسوم میں حصہ لیتے ہیں اور لاکھوں انڈے حصہ لیتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک زندہ رہتا ہے، اور حالانکہ وہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں تو بھی لاکھوں میں سے ایک زندگی پاتا ہے، حالانکہ ان میں سے ہر ایک انڈا اور جرسوما وہاں ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے زندہ صرف ایک رہتا ہے، باقی سب مر جاتے ہیں۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان میں سے کون سا انڈا تیار ہے اور ہو اس کے بارے میں کیا ہے۔ اس کا فیصلہ خدا کرتا ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی ہوگی، بری آنکھوں والا ہوگا یا گندمی رنگت والی ہوگی، یا وہ جو کچھ بھی ہوگا، اس کا فیصلہ خدا کرتا ہے۔ ملاپ پہلے نہیں ہوتا، بلکہ پہلے خدا فیصلہ کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک آ جائے اور ایک، کیا آپ نے انہیں ٹیسٹ ٹیوب میں ایک ساتھ آتے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے۔ یہ فیصلہ خدا کو کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے جیسا ہوتا ہے، لیکن انتخاب کے وسیلے ایک لیا جاتا ہے۔ قدرتی پیدائش انتخاب سے ہوتی ہے۔ خدا لاکھوں میں سے ایک کو چنتا ہے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر موجودہ سرزمین کی طرف اپنے راستے پر جا رہے تھے تو تقریباً 20 لاکھ افراد تھے۔ ان میں سے ہر ایک اسی قربانی کے برہ کے وسیلے بچا تھا، ورنہ وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے موسیٰ نبی کو سنا تھا۔ ان میں سے ہر ایک نے بحر کلزم میں بپتسمہ لیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک نے اس خاتون مریم کے ساتھ رقص کیا تھا، کنارے پر اوپر نیچے اچھلے تھے جب خدا نے دشمن کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک نے موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے روح میں گاتے سنا تھا۔ ان میں سے ہر ایک نے بیابان میں من کھایا تھا جو آسمان سے نازل ہوتا تھا۔ ہر رات تازہ من نازل ہوتا تھا جو کہ پیغام کا نمونہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے اس میں سے کھایا تھا، لیکن ان 20 لاکھ میں سے کتنے کامیاب ہوئے؟ 2، یعنی 10 لاکھ میں سے ایک۔ آج رات دنیا بھر میں کیتھولک سمیت تقریباً 500 ملین مسیحی لوگ موجود ہیں۔ دنیا بھر میں 500 ملین نام نہاد ایماندار موجود ہیں۔ اگر اٹھائے جانے کا عمل آج رات ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر 10 لاکھ میں سے ایک شخص چنا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہی ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اگلے 24 گھنٹوں میں 500 افراد غائب ہو جائیں گے۔ آپ کبھی اس کا ذکر بھی نہ سنیں گے۔ برحال بہت سے ایسے لوگ غائب ہو جائیں گے جو گنتی میں شامل بھی نہیں ہیں۔ دوستو، پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جیسا یوحنا بپتسمہ دینے والے کی آمد پر ہوا تھا۔ یہاں تک کہ شاگردوں نے پوچھا، کتاب مقدس کیوں کر کہتی ہے، رسول یا نبی کیوں کر کہتے ہیں، اور یہ کیوں کہا گیا ہے ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا؟ اس نے جواب دیا، میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا مگر تم نے اسے نہ پہچانا۔ ان دنوں میں سے کسی ایک دن ہم یہاں بیٹھے یہ کہہ رہے ہوں گے، مصیبت کے آنے سے پہلے ریپچر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے اور تمہیں معلوم نہیں ہوا۔ پورے بدن کو مہر بند کر دیا گیا ہے، صرف اسے آگے بڑھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسی طریقے سے ہے، میں پر امید ہوں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن دوستو آئیں، جبکہ یہ کاش آج رات ہم اپنے دل میں محسوس کریں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کام جو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ میں ایک خادم بھائی ہوتے ہوئے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، یہ بات پلپٹ سے میں پہلی مرتبہ کہنے جا رہا ہوں۔ میں نے آج رات اس بات کو کھل کر کہا ہے، اتنا میں نے پہلے کبھی کسی وقت کسی بھی طرح سے لوگوں کے سامنے نہیں کہا ہے، کیونکہ اس طرح کی عبادات میں میں بڑی آزادی محسوس کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے خدا کا نبی تسلیم کرتے ہیں تو جو کچھ میں نے کہا ہے آپ اسے دھیان سے سنیں۔ اگر آپ کے دل میں احساس کی ہلکی سی بھی دستک ہوئی ہے تو آپ سیدھا خدا کی طرف آ جائیں۔ آپ یہ کریں، مرد حضرات صرف ایک منٹ کے لیے رکیں، اپنے عقائد کو دیکھیں جن پر آپ کا یقین ہے، اپنی کلیسیاں کو دیکھیں، کیا وہ خدا کے کلام کے عین مطابق ہیں؟ کیا آپ نے ہر طرح کی مانگ کو پورا کر لیا ہے؟ کہتے ہیں میں ایک اچھا آدمی ہوں، اسی طرح نیکودیمس اور دوسرے لوگ بھی تھے، وہ بہت اچھے تھے، سمجھے، لیکن اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خواتین، میں چاہتا ہوں کہ آپ آئینہ دیکھیں اور غور کریں کہ خدا ایک عورت سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے، اور خدا کے آئینے میں دیکھیں، اپنے کلیسیا کے آئینے میں نہیں بلکہ خدا کے آئینے میں دیکھیں اور غور کریں۔ آپ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کی روحانی دلہن کے لائق ہیں؟ خادمین آپ بھی یہی سوچیں، کیا آپ کسی کی زندگی بچانے کے لیے ملامت اور تنبیہ کرتے ہیں؟ اگر پہلے کبھی نہیں کی تو کیا اب کریں گے، چاہے وہ آپ کو کلیسیا سے خارج کر دیں؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ اس طرح محسوس کر رہے ہیں تو میں آپ کو یسوع مسیح کے نام میں خبردار کرتا ہوں، ابھی اس میں سے نکل آئیں۔ اور خاتون، اگر آپ کی زندگی مسیحی معیار کے مطابق نہیں ہے تو نام نہاد مسیح کی طرح مت بنیں، بلکہ آپ کا دل اور آپ کی زندگی بالکل خدا کے نکاح نامے کی طرح ہونی چاہیے، یہاں بولنی چاہیے۔ اور اراکینے کلیسیا، اگر آپ کی کلیسیا ایسی نہیں ہے جو خدا کے کلام کے معیار کے مطابق پوری اترتی ہے، تو اس میں سے نکل آئیں اور مسیح میں شامل ہو جائیں۔ یہ ایک سنجیدہ تنبیہ ہے، ہمیں نہیں معلوم کون سا وقت ہے، آپ نہیں جانتے ہیں کس وقت کس دن یہ شہر سمندر کی تہ میں غرق ہونے جا رہا ہے۔ او کفر نہم، یسو نے کہا، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا، تو تھا گڑے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اگر یہ عظیم کام سدوم اور امورا میں ہوتے تو وہ آج کے دن تک بھی قائم رہتا۔ اور سدوم اور امورا بحر مردار کی تہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور کفر نہم بھی سمندر کی تہ میں پڑا ہوا ہے۔ اے شہر، تو جو فرشتوں کا شہر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو نے اپنے آپ کو آسمان تک بلند کیا ہے، تو نے ہر طرح کی بہودگی اور فیشن کی گندی چیزیں دنیا میں پھیلائی ہیں، یہاں تک کہ باقی دیشوں کے لوگ بھی ہماری گندگی لیتے ہیں اور اسے آگے بیچتے ہیں، اپنے عالی شان گرجے اور گنبد اور باقی چیزوں کے باوجود بھی تم ایسا کرتے ہو۔ یاد رکھنا، ایک دن تو سمندر کی تہ میں غرق ہو جائے گا، تیرا بڑا چتا ٹھیک اس وقت تیرے نیچے ہے، خدا کا غضب عین تیرے نیچے گرج رہا ہے، وہ کب تک تیری بنیادوں کے نیچے ریت کو قائم رکھے گا، جبکہ ایک میل گہرا سمندر جو پرے ہے تجھ میں داخل ہو کر بحرے سولٹن سے تجھے ملا دے گا، اور یہ پومپئی کے دن سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ اے لوس اینجلس، توبہ کر، تیرا بقیہ توبہ کرے اور خدا کی طرف رجوع کرے، خدا کے غضب کی گھڑی زمین پر آ پہنچی ہے، نکل آؤ، ابھی نکلنے کا وقت ہے، اور مسیح میں شامل ہو جاؤ۔ آئیں ہم دعا کرتے ہیں۔ پیارے خدا، جبکہ میری روح کانپ رہی ہے، میرے دل سے آگاہی کے آنسو گر رہے ہیں، بخش دے اے خدا، یہ آدمی اور یہ عورتیں ان باتوں کو جو میں نے کہی ہیں مذاق نہ سمجھے، اور کلیسیا کے لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے خلاف تعصب بازی ہے یا ان کی مخالفت ہے۔ خداون، کاش یہ دیکھ سکیں یہ محبت ہے۔ قادر مطلق خدا، تو میرا گواہ ہے، اس کنارے کے اوپر نیچے جا جا کر میں سالوں سال سے تیرے کلام کی منادی کر رہا ہوں، اے خدا میری گواہی قائم رکھنا، ہو سکتا ہے یہ آج رات ہو جائے، میں نے سچائی بیان کر دی ہے، تو جانتا ہے دلہن کی یہ رویا سچی ہے۔ خداون، میں نے اس میں تیرا نام لیا تھا اور یہ کہا تھا، خداوند یوں فرماتا ہے، اور خداوند جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں محسوس کرتا ہوں، میں اس سے پوری طرح آگاہ ہوں، بس میں تجھ سے خداوند یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آج رات لوگ اپنے آپ کو جھنجھوڑے اور آنے والے غضب سے دور بھاگ جائیں، کیونکہ نوشتہ دروازوں اور کوموں پر لکھا ہوا ہے، اس پر ایک سیاہ چک کا نشان لگا دیا گیا ہے، خداوند کی روح اس سے رنجیدہ ہو چکی ہے، اور یہ لوگ ترازو میں تولے گئے ہیں اور کم نکلے ہیں، نبوکت نظر کی ضیافت پھر سے دہرائی گئی ہے، جس میں نشہ باز گروہ اور نیم برہنہ عورتیں شامل ہیں اور خود کو مسیحی کہتے ہیں۔ اے آسمان کے خدا، جس حالت میں ہم آج رات موجود ہیں، اے خداوند اس گناہگار دنیا اور گناہگار لوگوں پر رحم کر، اے خدا میں رخنا میں کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور تیرے الہی رحم کو پکار رہا ہوں، اے خداوند آج رات اس ہجوم سے مخاطب ہو اور اپنی دلہن کو اپنی بلاہٹ کی طرف متوجہ کر، تاکہ وہ کسی عقیدے کے نشان کے پیچھے نہ چلے بلکہ خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی آواز کے پیچھے چلے۔ اے خدا یہ بخش دے، آج رات یہ ظاہر ہو جائے کہ تو ہی خدا ہے اور تیرا کلام سچائی ہے، جبکہ ان لوگوں کے سامنے سنجیدگی سے ہم انہیں تیرے کلام کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح کے نام میں میں یہ دعا ان کے لیے کرتا ہوں، انہوں نے تجھے کسی شک کے سائے کے بغیر دکھا ہے، تو ان کے ہجوم میں حرکت کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، اور اے خداوند تو جانتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اے خدا تو جانتا ہے کہ یہ سچائی ہے، اور میں یسوع کے نام میں دعا مانگتا ہوں، اے خداوند روح القدس ایک بار پھر شفاعت کرے اور خداوند سامین میں سے ان کو کھینچ لے جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، اے خدا یہ بخش دے، میں اپنے پورے دل سے دعا کرتا ہوں۔ خداوند فطری طور پر یہ لوگ میسج کی خدمت کے لیے اپنی جیب سے آخری سکہ بھی مجھے دے دیں گے، یہ کچھ بھی کر گزریں گے جو یہ کر سکتے ہیں، لیکن اے خدا جبکہ آخری ردہ رکھا جا رہا ہے اور وہ اس میں آ رہا ہے، تو اے خدا میں دعا مانگتا ہوں آج رات تو ان کو اجر دے اور اپنا پاک روح اس اجتماع پر انڈیل دے، تاکہ یہاں آگے پیچھے اچھلنا کودنا یا شادمانی کرنا نہ ہو، بلکہ رونا اور چلانا اور توبہ کرنا ہو اور قربان گاہ کے سنگوں کو پکڑنا ہو، کیونکہ آج رات ہم عدالت کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اے خدا یہ بخش دے، میں پورے خلوص دل کے ساتھ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ دعا یسوع مسیح کے نام میں مانگتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں نہیں جانتا اس کے علاوہ اور کیا کہنا ہے، اگر آپ کی نظر میں مجھ پر خدا کے فضل کا ہاتھ ہے، اگر آپ یقین کرتے ہیں کہ میں اس کا نبی ہوں، میں یہ بات عوام میں پہلی بار کہہ رہا ہوں، لیکن میں ایک عجیب سی آگاہی محسوس کر رہا ہوں، میں اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا، آپ جانتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں، میں اس طرح عمل نہیں کرتا ہوں، میں ایسا پیغام دینے اور ایسی باتیں کرنے سے جھجکتا ہوں، میں اس کا ذکر کرنے سے کتراتا ہوں تاکہ ایسا کرنے سے باز رہوں، لیکن اب سب کچھ بول دیا گیا ہے اور عدالت کے دن یہ گواہی کے لیے کھڑا ہوگا کہ میں نے سچائی بیان کی تھی۔ یہ لشکروں کا خداوند خدا یوں فرماتا ہے، ہو پینتی کوسٹلو اپنی زندگی کے لیے باغو دوڑو اور قربان گاہ کے سنگوں کو تھام لو اور چلاؤ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا جب تمہیں رونا پڑے گا اور اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عیسیٰ نے اپنا پیدائشی حق واپس حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اسے حاصل نہ کر سکا۔ ہو اے کیلیفورنیا میں تجھے سپرد کرتا ہوں، ہو اے فل گوسپل بزنس مین کی کنونشن جن سے میں پیار کرتا ہوں، جنہیں میں چھوڑ چکا ہوں اور جنہیں میں نے اپنے پورے دل سے چاہا ہے، آج رات میں تمہیں یسوع مسیح کے سپرد کرتا ہوں، اس کی طرف بھاگو، شیطان تمہیں کبھی بھی اس کی طرف آنے سے روک نہ پائے، ٹھیک اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہاں تک کہ آپ میں سے ہر ایک روح القدس سے بہت زیادہ مامور ہو جائے اور آپ کو اس کلام کی طرف لے آئے، پھر وہ آپ کو ٹھیک خواتین بنائے گا، پھر وہ آپ کو ٹھیک آدمی بنائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں آپ کے پاس روح القدس ہے تو پھر آپ کلام کا انکار نہیں کریں گے، ورنہ آپ کے اندر کوئی اور روح ہے، خدا کا روح اسی کے کلام پر مسیحا پر یعنی مسیح شدہ کلام پر آتا ہے، دلہن کو بھی مسیحا یعنی مسیح شدہ کلام ہونا چاہیے۔ آئیں خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، شاید آپ دوبارہ میری آواز کبھی نہ سن سکیں، لیکن خدا نے چاہا تو میں چند گھنٹوں کے بعد افریقہ کے سفر پر جا رہا ہوں، شاید میں واپس نہ آ سکوں، میں نہیں جانتا، لیکن میں نے آپ کو پورے دل سے بتایا ہے، میں نے آپ کے سامنے سچائی بیان کر دی ہے، جو کچھ خدا نے مجھے کہنے کے لیے کہا تھا اس میں سے کوئی بات بھی میں نے باقی نہیں چھوڑی ہے، اور میں نے یہ سب کچھ خداوند کے نام میں کہا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ وقت ہے، میں نہیں جانتا اس کا اظہار کیسے کروں، میں نے 3-4 مرتبہ پلپٹ چھوڑنے کی کوشش کی ہے لیکن میں نہیں چھوڑ سکا، یہ سنجیدہ گھڑی ہے، آپ اسے کبھی فراموش نہ کریں، ہو سکتا ہے یہ وہ وقت ہو جس میں خدا اپنی آخری پکار دے رہا ہو، میں نہیں جانتا کسی دن وہ آخری بار بلائے گا کب، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اس رویا کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ دلہن تقریباً مکمل ہو چکی ہے، دیکھیں برائے نام کلیسیائیں اندر آ رہی ہیں، جب بیوقوف کنواری نیند سے اٹھ کر تیل خریدنے گئی تو اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، دلہن اندر چلی گئی، اٹھایا جانا ہو گیا، جب وہ تیل خریدنے گئی ہوئی تھی دلہا آ گیا، کیا آپ سوئے ہوئے ہیں، جلدی سے بیدار ہو جائیں اور ہوش میں آ جائیں اور آئیں خداوند کے نام میں ہم سب یوں دعا کریں جیسے ہم اسی وقت موت سے مر رہے ہیں، آئیں ہر کوئی اپنے انداز میں دعا کریں، اے قادر مطلق خدا ہم پر رحم کر، اے خداوند مجھ پر رحم کر، ہم سب پر رحم کر، اس سے کیا بلا ہوتا ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے جو ہم کرتے ہیں یا ہم ان باتوں میں ناکام ہیں۔ اے خدا میں یہاں کھڑا رحم کے لیے پکارتا ہوں، اس سے پہلے کہ یہ وسیع شہر سمندر میں ڈوب جائے اور خدا کی عدالت اس ساحل کو مٹا دے۔ اے خدا میں دعا کرتا ہوں اور تو اپنی دلہن کو بلا لے گا۔ اب میں انہیں یسوع مسیح کے نام میں تیرے سپرد کرتا ہوں، آمین آمین۔ میں نے سچائی بتا دی ہے۔